आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। प्रिय स्वर्गीय पिता, आज रात्रि हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप वो हैं जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। ये बेचारी स्त्री यहाँ पर पड़ी है जिसकी शल्य चिकित्सा असफल हो चुकी है, परंतु ओ परमेश्वर हमें स्मरण है कि जब पहली शल्य चिकित्सा कभी इस पृथ्वी पर हुई आपने इसे स्वयं किया था। आपने आदम के एक ओर से एक पसली निकाली और चीरी हुई जगह को बंद किया और एक पत्नी बनाई। ओ पिता, आज रात्रि हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका हाथ नीचे आएगा और इस महान चीज को करेगा जो कि हम आपसे मांग रहे हैं। और प्रभु, ये दूसरे ये महिला जो दिमाग की दुर्बलता से पीड़ित है, दूसरे सब जिनके निवेदन है, हम उन्हें आपको समर्पित करते हैं। पिता, हम अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज रात्रि यहाँ होना वास्तव में एक सौभाग्य है, और इस भक्ति मंडली को देखना और अच्छा गायन, एक शानदार छोटा गायन समूह। ये लड़के जो यहाँ खड़े हैं, इन्हें देखते हुए मैं अंतर के विषय में सोच रहा था। साफ सुथरे, बाल कटे हुए। पिछली रात्रि मैं सोच रहा था उस स्थान के लिए जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। आवारों का एक झुंड वहाँ आया और तरणताल में एक लड़के को डुबाने का यत्न कर रहे थे। उनके लिए किसी को बुलाना चाहिए था कि उन्हें वहाँ से निकाले। कितना भिन्न है, देखिए बालक खड़े हैं, सुसमाचार के गाने गा रहे हैं, कितना अंतर है। सोचते हुए जैसा भाई हेनरी ने वहाँ कहा, वे पुरुष जिनके लंबे बाल जो स्त्रियों के होने चाहिए, अब देखिए ये ठीक बात है, ऐसे ही दिखाई पड़े। मैं इन लड़कों को इस प्रकार के बाल देखता हूँ, यहाँ तक कि वे छल्लेदार बनाने के लिए लगाते हैं अपने चेहरे के आसपास। मैं नहीं जानता, कभी कभी मैं हिम्मत ही हार जाता हूँ। ऐसा प्रतीत होता है ये सही में भ्रष्टता का समय है। पुरुष स्त्रियों के वस्त्र पहनने का यत्न कर रहे हैं और स्त्रियां पुरुषों के कपड़े पहन रही हैं, और पुरुष अपने बालों को स्त्रियों के समान छोड़े हुए हैं और स्त्रियों के बाल पुरुषों के समान हैं। जो भी है, इन लोगों के साथ क्या मामला है? क्या वास्तव में शिष्टाचार और सम्मान की धारा इस राष्ट्र और इन लोगों से, इस संसार से अलग हो गई? ये भयानक समय है, परंतु इस संसार में बहुत सी महिमामय समय है कि सुसमाचार प्रचार किया जाए। इसके पहले कि इस समय अस्तित्व में आता, यदि मैं समय के किनारे पर खड़ा हो सकता होता और पिता ने मेरी ओर देखा होता और कहता, इन युगों में से तुम किस समय प्रचार करना चाहोगे, तो मैं ठीक इस समय चाहता। ये ठीक बात है, ठीक उसके आगमन से पहले। इस सारी भक्त मंडली को देखते हुए जो यहाँ हमारे समक्ष बैठी है, कल ट्यूसान में एक मेरा सेवक मित्र घोड़े पर सवारी कर रहा था। इस व्यक्ति के विषय में सोचते हुए, महिला की रीढ़ की हड्डी यानी डिस्क, इस घोड़े ने उसको फेंक दिया। दूसरे व्यक्ति ने मेरे होटल पर प्रातः 1 बजे फोन किया और कहा, वो व्यक्ति जो तजुर्बेकार है अस्पताल में है, उसकी आंखें सफेद हो गई हैं, उसकी कमर दब गई, उसकी किडनी बाहर आ गई और उसका हृदय रुकने पर है। और मैं वहाँ फर्श पर घुटने के बल हो गया और दूसरे सिरे पर वो टेलीफोन पर था और उसके लिए प्रार्थना करी, और यहाँ आज रात्रि वो बैठा है, ठीक यहाँ पर बैठा है। वो अंतिम रात्रि थी। बॉब, क्या तुम वहाँ थोड़ा खड़े हो गए? ये है वो पुरुष वहाँ पर। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है, सुबह, रात, दोपहर, आधी रात या किसी भी समय। मैं लंबा बोलने वाला प्रचारक हूँ, जैसे कि वे कहते हैं, मुझे एक प्रकार से रात्रि के इस समय आरंभ करना ठीक नहीं लगता, और मैंने सोचा मैं इस पर विजय पा लूंगा। उस रात्रि क्यों हम उस विशेष स्थान पर बोल रहे थे और 15 मिनट के पश्चात मैं जारी था। लोग प्लेटें उठा रहे थे और मेरी ओर हिला रहे थे, जाओ बंद करो, आपको यहाँ से जाना है, सिगरेट पी रहे थे और चल रहा था। ये भोज वालों की गलती नहीं थी, ये वो लोग जिनसे ये किराए पे लिया गया था। और अध्यक्ष की पत्नी ने जाकर प्रबंधक को बताया, कहा आपको यहाँ से 9:30 बजे बाहर होना था, कहा आपको इसका ठेका नहीं लेना चाहिए था। वो महिला आज रात्रि यहाँ आई, वास्तव में भली महिला है, और इसने कहा, हम समझ गए कि आप ये चाहते थे, कहा इसे जितनी देर के लिए आप चाहते हैं ले लीजिए, ताकि इसलिए मैं इसके लिए बहुत ही आभारी हूँ, ये बहुत अच्छा है। भाई हेनरी, निश्चय ही मैं आपकी सराहना करता हूँ, आपकी कृपा की कि मुझे यहाँ दावत दी और ये धार्मिक सभा। पिछली रात्रि मेरा यहाँ पर सौभाग्य था कि असेंबली ऑफ गॉड में, जहाँ मैं विश्वास करता हूँ कि भाई बून पास्टर हैं, उन लोगों के झुंड में मैं बहुत अच्छा समय रहा। और कल रात्रि हम यहीं कहीं होने जा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि ये कहाँ है, और ये हमारी दूसरी धार्मिक सभा है, वे इसकी चिंता करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ, पढ़ रहा हूँ, और बढ़ रहा हूँ और यही सब कुछ जिसे मैं बनाए रख सकता हूँ। परंतु अब हम इस समय में विभिन्न चीजें देख रहे हैं। अब मुझे पिछली बार की याद है कि मैं यहाँ तंबू की सभा में था। मुझे स्मरण है कि मैं पिछली रात्रि एक बेचारे पति पत्नी के लिए बोल रहा था जो कि अपना मरा हुआ बालक लेकर आए थे। ये यहीं कहीं उन्होंने पूरे दिन और रात्रि गाड़ी चलाई। वो बेचारी माँ उदास छोटे बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। अब हो सकता है वो यहाँ पर बैठी हुई हो जितना मैं जानता हूँ, और वो पति उसके साथ और भी जोड़े थे। और वे उसने कहा मुझसे यदि मैं कार के पास जाऊँगा क्या, व्यक्ति ने बताया। मैंने छोटे बच्चे को बाहर लिया और इसे पकड़े हुए था, एक छोटा मरा अकड़ा ठंडा, और मैंने प्रार्थना करनी आरंभ करी। और जब मैंने प्रार्थना कर ली उस देह से ऐसा लगने लगा कि ये गर्म हो रही है, इसलिए बस मैं प्रार्थना करता रहा। उसने पैर चलाने आरंभ कर दिए और हिल रहा था, हो रहा था, इसलिए मैं चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने माँ को वापस दे दिया, वो उसके साथ घर वापस चली गई। इसलिए वो हो सकता है मसीह भी न हो जितना मुझे मालूम है, समझे। एक आश्चर्यजनक था, परंतु मैं इस विषय में क्या सोच रहा था। आज रात्रि मैं जानता हूँ एक कलीसिया भी जो मर रही है, ये हमारे पेंतिकोस्तल लोग हैं। हमें इससे झटक कर बाहर आना है। ओह बस यही है, केवल एक ही मार्ग है जिससे आप ये करने जा रहे हैं, वो प्रार्थना और वचन के साथ चलना। केवल यही मार्ग है कि आप ये करने जा रहे हैं, केवल एक ही मार्ग है, वो इसी प्रकार से यीशु मसीह कल आज और सर्वदा एक सा है। क्या हम चाहेंगे कि हमारी कलीसिया इस स्थिति में हो जैसे कि उसने वहाँ कहा, जैसे इंग्लैंड में? यही कारण है आप सोचते हैं मैं रूखा हूँ, आप पर चिल्लाता हूँ, मेरे करने का ये अर्थ नहीं है। परंतु मैं नहीं चाहता कि कलीसिया इस प्रकार की अवस्था में रहे। आप इस अवस्था में नहीं रहना चाहते, परंतु तब भी आपको इसे जोर लगाकर छोड़ना होगा जब तक इसे जड़ ना दें और इसे जकड़ दें। इसे करना ही है। इसलिए अब आज रात्रि मेरे पास थोड़ा सा है कुछ पवित्र लेख और मूल पाठ जिस पर थोड़ी देर में बोलना चाहता हूँ। मैं निश्चित समय में बोलने जा रहा हूँ। आप थक गए हैं क्यों? 30 मिनटों में पूरा कर दूंगा, निर्भर करता है। मैं सदा पवित्र आत्मा पर छोड़ता हूँ जिस ओर वो अगुवाई करे। थोड़े समय के लिए हम अपने सिरों को झुकाएं, लेखक से बात करें इसके पहले कि उसकी पुस्तक खोलें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस पुस्तक के रचयिता यीशु मसीह के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। आज रात्रि जो हम सुन चुके हैं उसके लिए धन्यवादित हैं। यदि इस सभा को हमें आमीन कहने के द्वारा विराम लगाना चाहिए और घर जाएं, यहाँ होना अच्छा था क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं। और पिता, अब जैसा कि हम इस वचन को खोलते हैं, हमसे सीधी सीधी बात करें इस वचन से होकर, ताकि हम उस घड़ी को जान सकें जिसमें हम जी रहे हैं। यदि हम जान जाएं वो घड़ी जिसमें हम जी रहे हैं, तो हम उस घड़ी के लिए स्वयं को तैयार कर सकते हैं। परंतु यदि हम अंधेपन में बिना जाने क्या और कहाँ हैं, तो फिर हम नहीं जानते कि कैसे तैयार करें। इसलिए पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप नाव को हमें वहाँ देखने देंगे, और द्वार को खुला हुआ और संदेश हमें वहाँ भीतर बुला रहा है। यीशु मसीह के नाम में इसे प्रदान करें, आमीन। यदि हम जान जाएं वो घड़ी जिसमें हम जी रहे हैं, तो हम उस घड़ी के लिए स्वयं को तैयार कर सकते हैं। परंतु यदि हम अंधेपन में बिना जाने क्या और कहाँ हैं, तो फिर हम नहीं जानते कि कैसे तैयार हों। देखो, उसी दिन उनमें से दो जन अमाउस नाम एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था, और वे इन बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछपाछ कर रहे थे, तो यीशु आसपास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थीं कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नाम एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि उन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य भस्म रखता था, और महायाजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इसराइल को छुटकारा देगा, और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है। और हम में से कई स्त्रियों ने हमें आश्चर्य में डाल दिया जो भोर को कब्र पर गई थीं और जब उसकी लोथ न पाई तो ये कहती हुई आईं कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वो जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। अब मैं लेता हूँ, यदि मैं इस विषय को कहूँ, वे घटनाएं, आधुनिक घटनाएं भविष्यवाणीदारी के द्वारा स्पष्ट हुई। ये सदा से परमेश्वर का रहा है, ना बदलने वाले परमेश्वर की विधि कि किसी निश्चित घटना के घटने से पहले अपने लोगों पर पहले प्रकट कर दे। यदि प्रभु यीशु के दिनों में लोग केवल परमेश्वर की खोज कर रहे होते और जान गए होते कि क्या घटित होने वाला है, तो वे यीशु को मृत्यु के लिए दोषी न ठहराते। परंतु ये कारण था क्योंकि वचन को पूरा ही होना था, क्योंकि यहूदियों को अंधा होना ही था। हम सब ये जानते हैं। क्या आप अनुभव करते हैं ये प्रतिज्ञा फिर इस युग में है जिसमें हम जी रहे हैं? लुदेशियन कलीसियाई युग, ये सातवीं कलीसियाई काल जिसमें हम अब हैं, नंगी, बेचारी, अंधी और ये नहीं जानती। वैसे ही जैसे उसने उन्हें पहले अंधा किया अपने चुने हुए लोगों में संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से, उसने आज वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की है। और यदि मैं इसे आदर भाव में कहूं, मसीह में जो मेरे भाई बहन हैं, इन्हीं किन्हीं दिनों में कोई ये कहने जा रहा है, क्या ये नहीं लिखा है कि ये अमुक अमुक बातें पहले घटित होनी हैं? और ये उसी प्रकार से होगा जैसे ये तब था। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वो तो पहले ही आ चुका और जो उन्होंने चाहा उसके साथ किया। जब उन्होंने उससे पूछा, कहा, शास्त्री क्यों कहते हैं और पवित्र शास्त्र कहता है कि पहले एलिया को आना चाहिए, उन्होंने ये यीशु से कहा। उसने कहा, वो पहले ही आ चुका और तुमने उसे नहीं जाना, समझे? और संभवतः इसी प्रकार से फिर अंत में होगा। अब हम घोषित करना चाहते हैं कि जाने कि इस युग में जिसमें हम रह रहे हैं क्या होना है। परमेश्वर ने प्रत्येक युग के लिए अपना वचन निर्धारित किया है, इतना हर युग के लिए। और हमें ध्यान देना चाहिए कि एक युग दूसरे युग में नहीं जा सकता, ये कार्य नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, जैसे मैंने कहा पिछली रात्रि, मैं विश्वास करता हूँ या मैं एक रात के बाद दूसरी रात निरंतर बोल रहा हूँ विभिन्न स्थानों में, और कभी मैं इस दूसरी बार टिप्पणी करता हूँ, मेरा अर्थ स्वयं को दोहराने का नहीं, परंतु मैं ये कहता हूँ क्या होगा, क्या भला होता मूसा नूह का संदेश प्रचार करता, या क्या भला होता यदि यीशु मूसा का संदेश प्रचार करने का यत्न करता, या क्या भला होता यदि मार्टिन लूथर कैथोलिक के संदेश को चलाता रहता, क्या भलाई होती यदि वेस्ली लूथरन के संदेश को चलाए रहता, क्या भला होता यदि पेंटिकॉस्टल मेथोडिस्ट के संदेश को जारी रखते, या क्या भला होगा कि पेंटिकॉस्टल जारी रहते जबकि दुल्हन बुलाई जा रही है। देखिए, हम बीज के समय में हैं, यहाँ हम अंत के समय में हैं। जब तक गेहूं का दाना भूमि में ना गिरे वो अकेला रहता है। एक आलोचक के समान जब से पुस्तक आई है मैंने टिप्पणी की, संभवतः ये आपके नगर में है, आपके नगर में, कि जर्मन के लेखक ने जिसने बहुत ही आलोचनात्मक लिखा है वो नास्तिक है। ठीक है, मैं उसे दोषी नहीं ठहरा रहा क्योंकि उसने मुझे दोषी ठहराया है, परंतु क्योंकि नास्तिक होने के नाते पुस्तक कभी भी अलमारी पर नहीं होनी चाहिए। और उसने कहा एक परमेश्वर बैठा रह सकता है और कहे वो लाल सागर को खोल सकता है और अपने लोगों को छुड़ा ले और फिर हाथों को पेट पर बांधे और उन अंधेरे युगों को देखें कि मसीह शिरों द्वारा टुकड़े और फाड़े जा रहे हैं। वे माताएं जिनके बालों को तारकोल से नहलाकर और क्रूस पर लटकाई गईं और जलाई गईं, उनके बालक होने वाली माताएं, वे उनके पेट फाड़ते और बालक के लिंग पर बाजी लगाते, बैठा रहा और होने दिया, वे लोग जो इस परमेश्वर के दास समझे जाते। आप देखते हैं वचन प्रेरणा है। आप कभी भी वचन को नहीं जान पाएंगे कि केवल बैठकर इसे पढ़ते रहें, उसे धर्म विद्यालय के दृष्टिकोण से, शिक्षा की दृष्टि से, इसने कभी काम नहीं किया। अधिक समय नहीं हुआ मैं बैप्टिस्ट के सेवक से बातें कर रहा था। उसने कहा जब तक हम सही यूनानी भाषा ना सीखें, जब तक हम ना, मैंने कहा निशिन सभा में उसके पहले वे बाइबल के यूनानी शब्दों पर तर्क कर रहे थे, आप इसे कभी नहीं जान पाएंगे। बाइबल प्रेरणा से प्रकट हुई, केवल यही चीज है, वो प्रकाशन। यीशु ने पत्रस को बताया, इस पत्थर पर, प्रकाशन का ये पत्थर प्रकट करता है कि वो कौन है। हे योना के पुत्र शमौन, मांस और लहू ने ये तुझ पर प्रकट नहीं किया, परंतु मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसने ये तुझ पर प्रकट किया है। इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, पत्रस पर नहीं, न कि अपने पर, परंतु इस आत्मिक प्रकाशन पर कि वो कौन था। और वो वचन संत यूहन्ना 1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ और हमारे मध्य में रहा। इब्रानियों 13:8, वो कल आज और सर्वदा एक सा है। इसलिए हम उस दिन में रह रहे हैं जबकि परमेश्वर के वचन का प्रकटीकरण पेंतिकोस्तल युग से भिन्न में आया। ये और ये ठीक बात है। इसमें रखें आप, मैं अनपढ़ व्यक्ति हूँ, परंतु आप प्रकृति को नहीं हरा सकते क्योंकि परमेश्वर प्रकृति की निरंतरता में कार्य करता है। जैसे कि मैंने कहा, सूर्य उदय और अस्त होता है और दिन को पार करता है, जैसे विद्यालय का युग और सांझ को मर जाता है और अगली प्रातः फिर उदय हो। पेड़ों में जाड़े के समय जीवन रस जड़ों में चला जाता है और वसंत में वापस आता है। ध्यान दें, ये गेहूं के बीज के समान है, दुल्हन। यही कारण है कि परमेश्वर इसे इसी प्रकार चलने देता है। वो शानदार वास्तविक मूल कलीसिया जो पेंतिकोस्तल के दिन पर स्थापित हुई, वो बढ़ी और बढ़ी उस पेंतिकोस्तल के दिन से उस महान कलीसिया में, और अंधियारे युग में इसे भूमि में गिरना ही था और सारे बीजों के समान दबे रहना था। इसे मरना ही था ताकि ये फिर से सुधार में वापस आए। ये सुधारक व्यक्ति के रूप में वापस आया, मार्टिन लूथर। और वहाँ से जैसे कि गेहूं का डंठल ऊपर आ रहा है, पहली चीज जो ऊपर आती है वे दो पत्तियाँ, तब फिर और पत्तियाँ आती हैं। मार्टिन लूथर आया और फिर ज्विंगली और आगे कॉल्विन, और जैसे वे बढ़ते गए अंततः ये पुष्प बल्लड़ में आ गया। और ये जॉन वेस्ली युग में था, इसमें पराकरण आ गए। वहाँ से पेंतिकोस्तल युग आया, इतना समीप जैसे कि गेहूं का वास्तविक बीज हो, यदि आप उस पुष्प बल्लड़ को देखें। परंतु यदि आप उस गेहूं को लेंगे और उसे निकालें तो उसमें दाना नहीं होगा, ये केवल भूसा दाने की आकार में है। परंतु इसे वहाँ किसी उद्देश्य से रखा गया है कि दाने के लिए आड़ बने, जब तक यदि इसी प्रकार से सूर्य उस पर पड़े तो ये उसे मार डालेगा। इसे वहाँ एक निश्चित समय तक रहना है और सारा जीवन उस छिलके से, छिलके को छोड़े, जैसे कि ये भूसे को छोड़ता है, पराकरण को छोड़ता है और बीज में चला जाता है और फिर वही रूप धारण करता है जैसे कि ये आरंभ में भूमि में था। अब हम ये जानते हैं, जब कभी ये संदेश दिया गया तो वो 3 वर्षों में उन्होंने एक संस्था बना ली। जब वे ये करते हैं वे इसे वही मार देता है। लूथर के दिनों में यही हुआ, ऐसा ही वेस्ली के दिनों में हुआ, यही अलेक्जेंडर कैंपबेल के दिनों में हुआ और उन बाकी के, यही पेंतिकोस्तल के दिनों में हुआ, बिल्कुल यही। देखा, आप एक स्थान में पहुंचते हैं, हर कोई घमंडी हो जाता है और हट जाता है और वे नया प्रकाशन प्राप्त नहीं कर सकते। वे बस गए और वे वहां हैं और वे मृत हो गए और उसमें से जीवन चला गया और गेहूं को बनाने के लिए आगे बढ़ गया। और जब गेहूं आता है, वो जीवन जिसने उस गेहूं तक यात्रा की, वो पुनरुत्थान में सारी चीजों को ले आता है। जी हाँ, स्वर्गारोहण के लिए ले आता है। अब स्मरण रखें, ये संदेश दिव्य चंगाई से आरंभ हुआ, आश्चर्य कर्मों से। अब यदि परमेश्वर इसे साधारण कलीसिया के द्वारा होने देता, जैसे कि हमारे यहाँ हुए हैं, तो ये परमेश्वर नहीं था। परमेश्वर को दिखावा नहीं करना होता है, वो ये नहीं करता, उसे ये चीजें नहीं करनी है कि हमारा मनोरंजन करे, जैसे कि हम अमेरिकन किया करते हैं मनोरंजन। परंतु वो ये लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए करता है कि वो कुछ करने पर है। उसे देखिए, जब वो आता है, वो शानदार अच्छा भविष्यद्वक्ता, रब्बी गलील का भविष्यद्वक्ता, क्यों, उसकी सेवा आश्चर्यजनक थी, उसका हर कलीसिया में स्वागत है। परंतु एक दिन वो बैठ गया और कहा, मैं और पिता एक हैं। ओ प्रभु, ये बहुत अधिक हो गया, ऐसे व्यक्ति से अलग रहो। जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू पियो तो तुम्हें जीवन नहीं, क्यों, वो एक जादूगर है, ऐसे व्यक्ति से अलग रहो, समझे। देखिए, उस चिन्ह के पीछे पीछे कुछ आने वाला है, देखिए कुछ आने वाला है। भूसे ने उसे थाम रखा है, परंतु अब भूसा अलग हो गया है, इसे होना ही है। और स्मरण रखें, 20 वर्ष बीत गए हैं, इसमें से कोई नामधारी नहीं बना और ये नहीं आएगा। हम नामधारियों के अंत में हैं, गेहूं ने रूप धारण कर लिया है। परंतु अब गेहूं के साथ क्या मामला है, आप नहीं कर सकते, इसे पकने के लिए पुत्र की उपस्थिति में रहना है, इसके पहले कि इसकी यांत्रिकी उठा ले। अब घटनाएं जो घटित होती हुई दिखते हैं, देखते हैं, ये पूरी रीति से बाइबल में दर्शाई गई हैं, हर युग की। हम सोचते हैं कि हम उस प्रबंध से बाहर हैं, परंतु हम नहीं हैं। हर चीज ठीक परमेश्वर के वचन के संग चल रही है। अब बाइबल किसी भी पवित्र पुस्तक से अलग है। बाइबल जैसी कोई पुस्तक नहीं, क्योंकि बाइबल वचन में परमेश्वर का रूप है। समझे, ये विचार का प्रकटीकरण एक वचन, परमेश्वर का विचार प्रकट किया गया, उसका वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा, और उन्होंने बाइबल लिखी जो कि वचन के रूप में है, और यीशु ने इसे एक बीज कहा। और कोई भी बीज अपने ही प्रकार को लाएगा यदि इसकी परिस्थिति ठीक होगी, सही वातावरण। अब ये पुस्तक भविष्यवाणी की, ये पुस्तक ये भविष्य की घटनाओं को पहले बता रही है। अब ये पुस्तक यीशु मसीह का समस्त प्रकाशन अपने में रखती है। आपको इसमें मिलाना नहीं या इसमें से निकालना नहीं है, और हर प्रकाशन इसी में से ही आना है। देखिए, इसे वचन ही होना है। इसलिए लोग कहते हैं मेरे पास प्रकाशन था। जी हाँ, हम जानते हैं जोसेफ स्मिथ और बहुत से उनके पास प्रकाशन और चीजें थी, परंतु वचन के विरुद्ध, इसे वचन के अनुसार ही होना है यदि ये परमेश्वर की ओर से आता है, क्योंकि इसे प्रमाणित होना है या परमेश्वर की उपस्थिति का प्रमाण। और ये सारी चीजें पहले ही से जानता है। उसके पूर्व ज्ञान होने के कारण उसने अभिषेक पहले से ही अभिषेक किया है। बाइबल में ये पहले से ही ठहराया जाना है। हर युग उस स्थान पर, और हर व्यक्ति अपने स्थान पर, और हर संदेशवाहक अपने स्थान पर। वो परमेश्वर है, शैतान उससे बढ़कर और कुछ नहीं ले सकता। और वो परमेश्वर है, उसने हर चीज को होने के लिए पहले से ठहराया है, और ठीक उसके वचन के अनुसार होता है। इसलिए यदि हम देख सकते हैं उसके वचन के द्वारा कि किस युग, किस समय में हम रह रहे हैं, आप इसे ठीक बाइबल में देखेंगे, इस युग में हम क्या हैं, इस समय में क्या घटित होना है। अब दूसरी पुस्तकें, हम बहुत सी पुस्तकें पाते हैं जो पवित्र कहलाती हैं, और आदि आदि। मैंने कुरान पढ़ी है और बहुत सी हैं, परंतु आप देखिए कि उनकी पवित्र पुस्तकें आचार शास्त्र हैं, आचरण का या धार्मिक विज्ञान का, परंतु ये पुस्तक एक भविष्यद्वक्ता, ये पुस्तक ये और पुस्तकों से भिन्न है। बाइबल परमेश्वर का वचन है जो भविष्य को बताता है। ये पहले से बताता है क्योंकि ये पूर्व चेतावनी है। यदि परमेश्वर कुछ भेजता है तो बाइबल में प्रतिज्ञा करता है और कहता है तो वो तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक कि वो पहले अपने नबियों को न बता दे। ये Amos 3:7। वो और परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। वो इसे प्रकट करता है सारे युगों में होते हुए। उसका करने की यही विधि है। वो इसे करने में कभी असफल नहीं हुआ। अब हमसे अंत के दिनों में इसे फिर वापस लाने की प्रतिज्ञा की गई है। वहाँ कोई कलीसिया नहीं होगी, कोई नामधारी नहीं, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पेंटेकोस्टल। वो इन कलीसियाओं से कभी दुल्हन नहीं लेगा। उनकी इस आधुनिक स्थिति में वे ये नहीं कर सकते। वे असफल हो गए। वे एक दूसरे की जान को बने हैं, और संसारिकता भीतर तक आ गई है, और आदि आदि, और वे अपने ही मार्गों में मर गए। और इसलिए परमेश्वर जानता है, और इस वचन को प्रकट करने के लिए एक कहता है मुझे ये मिल गया, और परमेश्वर धन्य है। ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से तब था जब यीशु पहली बार आया था, और हरेक के पास एक शिक्षा थी, और हरेक के पास ये था, परमेश्वर के पास से हमारे पास कुछ आना ही था, और परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा की थी। एक ही विधि है जिससे वो करेगा, वो ये कि अपना नमूना बनाए रखे। Malachi 4 के अनुसार अंत के दिनों में उसने हमारे पास भेजने की प्रतिज्ञा की है। एक भविष्यद्वक्ता पृथ्वी पर होगा जो लोगों के हृदय को फेर देगा, बालकों के हृदय को प्रेरित पूर्वजों की ओर फेरेगा। उसने अपने वचन में इसकी प्रतिज्ञा की है, Luke 17 और बहुत सी जगहों में उसने इसकी प्रतिज्ञा की है कि वो अंत के दिनों में वो इसे करने के लिए प्रमाणित वचन से क्या करेगा। देखिए, एक मनुष्य कुछ भी कह सकता है, परंतु जब तक परमेश्वर उस वचन का अनुवाद ना करे। देखिए, अब हमारे पास अपनी व्याख्या है। हम कहते हैं इसका अर्थ ये है, और ये वाला मेथोडिस्ट और ये कहता है, बैप्टिस्ट ये कहता है, और पेंटेकोस्टल ने ये कहा, वननेस ये कहता है, टूनेस ये कहता है, और ओ आप यहीं पर हैं। परंतु परमेश्वर को अनुवाद की आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं अपना अनुवादक है। वो अपने वचन का स्वयं अनुवाद करता है, उसको प्रमाणित करने के द्वारा उस युग में जिसमें उसका उद्देश्य है, वो युग जो इसके लिए दिया गया। हम पेंटेकोस्टल युग में जीवित नहीं हैं, हम दूसरे युग में जी रहे हैं। देखिए, हम मेथोडिस्ट के युग में नहीं हैं, हम दूसरे युग में जी रहे हैं। हम यहाँ दुल्हन के युग में जी रहे हैं। कलीसिया को बाहर बुलाना और स्वर्गारोहण के लिए साथ इकट्ठा होना, यही वो युग है जिसमें हम रह रहे हैं। मेरे निष्पक्ष दृष्टिकोण में ये बिल्कुल सही है। और ये पुस्तक भविष्यवाणी की पुस्तक है। विश्वासियों के लिए आज्ञा है कि इसका आदर करें और इसे पढ़ें और इसके लेखक का विश्वास करें, क्योंकि हर वचन जो इसमें लिखा है उसे घटित होना ही है। हर बात जिसकी प्रतिज्ञा हुई है उसे घटित होना है, क्योंकि ये यीशु मसीह हर युग में है। बीते कल में ये यीशु मसीह नूह में था, मूसा में वो यीशु मसीह था, दाऊद में ये यीशु मसीह था, यूसुफ में ये यीशु मसीह था, ये यीशु मसीह कल आज और सर्वदा एक सा है, और आज ये यीशु मसीह अपने लोगों के मध्य में है, उन प्रतिज्ञा किए गए कार्यों को कर रहा है जो उसने युग में करने को कहे हैं। ये यीशु मसीह है। परंतु कलीसिया इतनी घमंडी हो गई, यहाँ तक कि जैसा भाई ने यहाँ कहा, और हमारी कलीसियाएं भी उसी प्रकार की हो गई, जब तक कि हमें कोई चीज झकझोर कर वचन पर वापस न ले आए। कैसे जानते हैं कि इससे काम चलने वाला है? इसे तो परमेश्वर की अपनी योजना के अनुसार आना ही है। ये साधारण जन के द्वारा नहीं लाया जा सकता, ये व्यापारी के द्वारा नहीं आएगा, ये कलीसियाओं के द्वारा नहीं आ सकता। परमेश्वर ने अपनी योजना रखी है। उस दिन मैं यहाँ शेयरपोर्ट में बोला था समस्त राष्ट्र में प्रसारण के द्वारा कि परमेश्वर की सेवा बगैर परमेश्वर की मर्जी के करना। दाऊद ने परमेश्वर के वाचा के संदूक को वापस घर में लाने का प्रयत्न किया। वो अभिषिक्त राजा था, क्यों? उसने अपने प्रतिनिधि से, अपने सहस्पतियों और आदि आदि से परामर्श किया कि ये, और उन सब ने कहा कि ये प्रभु का वचन है। उसने याजक से परामर्श किया जो बहुत अच्छा था, और वे सब इतने उत्तेजित थे कि वे चिल्लाए और हर धार्मिक कार्य किया जो था, और वे सब परमेश्वर की इच्छा के इतने विरोध में थे कि वहाँ राष्ट्र में नबी था जिसका नाम नातान था, उससे इस विषय में पूछा ही नहीं गया, समझे? और हम पाते हैं इससे कार्य नहीं हुआ, यद्यपि वे निष्ठावान थे, परमेश्वर की सेवा करने का यत्न कर रहे थे। और आप कभी भी इतने निष्ठावान हो सकते हैं, परंतु जब तक हम ये नहीं जान ले कि हम क्या कर रहे हैं, आप हवा में घूंसे चला रहे हैं। वापस परमेश्वर के वचन में आए और उसके साथ सही हो जाएं और फिर जाएं, तब आप जानते हैं। एक सिपाही के समान जो नहीं जानता कि करना है, जब तक कि उसे करने के लिए आज्ञा ना मिले। हमें मसीह सिपाही होना चाहिए और इस घड़ी के लिए बाइबल से आज्ञाएं लेनी चाहिए, न कि बीते कल की जिम्मेदारी या उसके पीछे की जिम्मेदारी, परंतु आज कि हमें कहाँ जाना है, उस घड़ी का पता करें कि जिसमें हम जी रहे हैं। और ये आधुनिक घटनाएं हमारे से तेजी से निकल रही हैं, और एक दिन हम पाने जा रहे हैं कि हम खाली पीछे छूट जाएंगे और पकड़े गए, पशु की छाप में मोहर बंद हुए इसके पहले कि हम जाने। और अब धीरज के साथ हमें इसकी प्रतीक्षा करनी है, उन भविष्यवाणियों के लिए जिनकी प्रतिज्ञा हुई है, उनमें से प्रत्येक को इस युग में पूरा होना है, क्योंकि ये हमें पहले से बता दिया गया है, इसके पहले कि लेखक इसे करे और हम इसे होते हुए फिर से देखें। ये क्या ही समय है जिसमें हम रह रहे हैं, कुछ एक कैलेंडर के समान। आप कैलेंडर को देखते हैं कि आप वर्ष के कौन से दिन में जीवित हैं, और आप परमेश्वर की बाइबल को देखते हैं कि हम कौन से युग में जीवित हैं। हम मेथोडिस्ट के युग में नहीं जी रहे हैं, बैप्टिस्ट युग में। हम दुल्हन के युग में जी रहे हैं, बुलाहट परमेश्वर के मार्ग से वापस लाए जा रहे हैं, जिससे उसने वापस लाने की प्रतिज्ञा की है, उसने ये करने की प्रतिज्ञा की है। परंतु जैसा कि ये हर युग में रहा है, लोग अपनी ही व्याख्या डालते हैं, उस धर्म ज्ञान के द्वारा और परमेश्वर के दिव्य प्रमाण का विश्वास नहीं करेंगे। ये परमेश्वर की व्याख्या है, न कि जो मैं कहता हूँ या जो कोई और कहता है, परंतु जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है और जो परमेश्वर करता है, ये सिद्ध करता है कि ये परमेश्वर की अपनी व्याख्या है, अपने ही वचन की। उन्होंने ये तुम पेंतिकौसलों को 45-50 वर्षों पहले बता दिया, आपके माताओं और पिताओं को, जब वे मूल पेंतिकौसल थे, संस्था से बाहर निकले और बातों को श्रापित ठहराया और उनमें से बाहर आ गए, फिर जैसे कुत्ता अपनी उल्टी पर फिर से इसमें वापस चले गए और वही बातें की, उस कलीसिया को मार डाला, तुम अपनों के द्वारा ही मारे गए, वही चीज। उनमें के लोगों के विरोध में कुछ नहीं, ये उन चीजों का तंत्र है जो इसको कर रहा है। घर जा रहा हूँ, मैं दूसरे व्यक्ति की सभा में ये प्रचार नहीं करता, मैं सर्प के चरण चिन्हों को प्रचार करने जा रहा हूँ, इसे सुने यदि आप टेप लेते हैं। और ध्यान दें, वे परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणियों को पूरा होता हुआ देखने में चूक गए। यदि वे याजक, उन्होंने ये तय कर लिया था कि किस प्रकार से मसीह आने वाला था, वे जानते थे कि क्या घटित होने वाला है। फरीसियों के अपने विचार थे, सदूकी, हेरोदियन और ओ, उनके अपने अपने विचार थे, परंतु वो नहीं आया, वो उनके विचारों से विरुद्ध आया, परंतु ठीक वचन के अनुसार। यीशु ने कहा, यही बात यहाँ पर थी, यदि तुमने मुझे जाना होता तो तुम मेरे दिन को भी जानते, यदि तुमने जाना होता। तुम कहते हो, अच्छा मूसा, हमारे पास मूसा है। कहा, क्यों? यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, क्योंकि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु देखिए, जब परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं की पुष्टि कर रहा था, तो ये उनके लिए ये गौरवपूर्ण विधि से था जिसमें कि यीशु को आना चाहिए था, और मेरा अर्थ मसीह को सीधे उनके झुंड के पास आना था, या फिर वो मसीह नहीं। भाई आज ये लगभग वैसा ही है। यदि तुम मेरे चश्मे से नहीं देखते हो तो फिर तुम नहीं देख रहे हो। देखिए, और ये इसलिए, ये इस प्रकार से है, हम ये सत्य है। ऐसा सोचने से हमें घृणा आती है, परंतु ये पूर्णतः सत्य है। इब्रानियों 1:1, परमेश्वर ने पूर्व युगों में बाइबल को अपनी चुनी हुई विधि से लिखा। उसने इसे धर्म ज्ञानियों के द्वारा कभी नहीं लिखवाया, ना ही इसकी व्याख्या धर्म ज्ञानियों के द्वारा की। कभी भी ऐसा समय नहीं रहा कि धर्म ज्ञानियों ने परमेश्वर के वचन की व्याख्या की हो। व्याख्या केवल भविष्यद्वक्ता के ही पास आई, और केवल एक ही विधि है कि इस बखेड़े से बाहर आए। परमेश्वर ने हमें वो भविष्यद्वक्ता भेजा, बिल्कुल सही, केवल एक ही विधि के द्वारा। ये होने जा रहा है कि इसका विश्वास किया जाए, ध्यान दिया जाए और पूरा हो। देखिए, ये मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा गया, परंतु ये परमेश्वर के द्वारा लिखा गया है। ये धर्म ज्ञानियों की पुस्तक नहीं है, ये परमेश्वर की पुस्तक है, जो कि भविष्यवाणी की पुस्तक है। भविष्यद्वक्ता के द्वारा लिखी गई और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा अनुवाद किया गया। बाइबल ने कहा, प्रभु का वचन भविष्यद्वक्ताओं के पास आता है। बिल्कुल सही है। ये कितनी सुंदर चित्रित किया गया है, करके दिखाया गया है। जब यीशु पृथ्वी पर आया था और यूहन्ना उस दिन का नबी था और भविष्यवाणी कर रहा था, उन्होंने कहा, तुम्हारे कहने का अर्थ है कि परमेश्वर हमारी यहाँ बड़ी बड़ी सभाओं को तोड़ने जा रहा है और ये सारी बातें, और एक समय होने जा रहा है जब हमारे मंदिरों में और अधिक आराधना नहीं होगी। उसने कहा, एक समय आ रहा है जब परमेश्वर के मेमने का बलिदान चढ़ाएगा एक मनुष्य, और उसने ये कहा कि जब वो आएगा तो वो जान जाएगा। और उसने कहा, वो उसके संदेश के लिए इतना निश्चित था। उसने कहा, वो ठीक अब तुम्हारे बीच में खड़ा है और तुम ये नहीं जानते, वो ठीक तुम्हारे मध्य में है और तुम इसे नहीं जानते। और एक दिन जब यीशु निकल कर आया, यूहन्ना ने ऊपर देखा और उसके ऊपर चिन्ह देखा। उसने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप उठा लिए जाता है। उसी घड़ी यीशु जान गया कि वो लोगों के सामने प्रमाणित किया गया। अब वो वचन था, क्या हम संदेह करेंगे? बाइबल ने कहा, वो वचन था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ और हमारे मध्य में वास किया, और वो यहाँ पर है। यहाँ वचन पृथ्वी पर है, देखा, सही सिद्ध, सीधा जल में भविष्यद्वक्ता के पास पहुँचा। ये ठीक बात है, वचन सदा उसके भविष्यद्वक्ता के पास आता है। इसलिए हम ये आशा नहीं कर सकते कि ये धर्म ज्ञानियों के पास आता है। उसके आने की आशा हम नामधारियों के पास नहीं कर सकते। अब इसे परमेश्वर के ही मार्ग से आना है, जिसके विषय में वो हमें बता चुका है कि यही मार्ग है जिससे वो कभी आया। इससे घृणा की जाएगी, तुच्छ जाना गया, अस्वीकार किया गया। जब ये आता है, इसे एक और फेंक दिया गया और आदि आदि, परंतु जो भी हो, परमेश्वर इसे करेगा। इसे यीशु मसीह में अस्वीकार किया गया, इसे यूहन्ना में अस्वीकार किया गया, इसे यिर्मयाह में होते हुए अस्वीकार किया गया, इसे मूसा से होते हुए अस्वीकार किया गया। ये सदा इसी प्रकार से रहा है, परंतु परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के मार्ग पर आगे बढ़ा कि वो इसे करेगा। जी हाँ श्रीमान, वो इसे करने में कभी भी असफल नहीं रहा कि इसे उसी प्रकार से करे। वो मनुष्य जिसने उसका दर्शन देखा या उसकी आवाज सुनी, कभी भी इसे नहीं समझ सका। बहुत से मामलों में वो नहीं जान पाया, क्योंकि वो केवल परमेश्वर का एक यंत्र है। ये परमेश्वर का विचार मनुष्य के होंठों से प्रकट हुए एक विचार, परमेश्वर का प्रकट किया गया वचन। परमेश्वर अपना चुनाव स्वयं करता है, अपने पूर्व ज्ञान के चुनाव से। उसने ये हर युग में किया, उसने हर युग के लिए मनुष्य को तय किया। जैसे जब मूसा, जब वो उसे पूरा करने पर था जो उसने अब्राहम से कहा था, मूसा एक ठीक सही बालक उत्पन्न हुआ। वो ऐसा होने में कुछ नहीं कर सकता, वो इसी प्रकार से जन्मा, क्योंकि वो इसी उद्देश्य के लिए जन्मा था। और इसलिए हम पाते हैं कि परमेश्वर ये हर युग में करता है। परमेश्वर अपना चुनाव अपने पूर्व ज्ञान के चुनाव से करता है, अपने नबी को चुनता है और वे उस युग के लिए तय करता है। उसका स्वभाव तय करता है, मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य के प्रचार का तरीका, कि उसके वरदान का सम्मान करें, और सब वो इसलिए करता है कि उस दिन की चुनौती को ले। परमेश्वर ने उस मनुष्य को रचा, उसे भेजा, और उसके अपने विचार में, जैसा मैंने गत रात्रि प्रचार किया, हम परमेश्वर के जीवांश के जीन हैं। वो जान गया कि ये मनुष्य उस युग में होगा, इसके पहले कि कोई अणु होता या एक ज्योति होती या कोई चीज पृथ्वी पर होती, क्योंकि आप अपने पिता के जीन हैं और आप अपने पिता में थे, तब भी आपके पिता की आपके साथ कोई संगति नहीं थी, क्योंकि वो आप वहाँ पर थे परंतु आप ये नहीं जानते थे, और वो नहीं जानता था, परंतु आप प्रकट हुए ताकि आप कर सकें, वो आपके साथ संगति कर सके। और आप नया जन्म पाने के कारण आप अनंत जीवन से जन्मे, और ये परमेश्वर का जीवन जोई है। जोई ग्रीक यानी यूनानी भाषा का शब्द अनंत जीवन का एक रूप। तब यदि आप परमेश्वर के पुत्र या परमेश्वर की पुत्रियां हैं, तो आप सारे समय से परमेश्वर में थे, परंतु वो जानता था कि आप कौन से गर्भ और समय में लगाए जाएंगे। इसलिए अब आप एक जीवधारी बनते हैं, एक परमेश्वर के एक पुत्र, परमेश्वर के प्रकट किए हुए पुत्र या पुत्री, कि इस घड़ी की चुनौती को स्वीकार करें, इस घड़ी के जीवते परमेश्वर और सत्य के प्रमाणित करने के लिए वो संदेश जो इस समय आ रहा है। ये ठीक बात है, पृथ्वी के रचने से पहले आप तय हो गए थे। यदि ये नहीं था, यदि आपको इस प्रकार नहीं चुना गया, तो कोई मतलब नहीं, आप कितनी भी नकल का यत्न करें, आप इसे नहीं कर पाएंगे। आप चुकंदर में से लहू नहीं निकाल सकते, जबकि उसमें लहू है ही नहीं। यही कारण है कि मैं कहने का यत्न करता हूँ। तब लोग सोच रहे होते हैं, हम स्त्रियों पर छोटे बालों के लिए चिल्लाते हैं, इस बात को कहने के विषय में लोग मुझसे कहते हैं कि आप अपनी सेवकाई खराब करने जा रहे हैं, वो सेवकाई जो परमेश्वर ने स्वयं अभिषिक्त की। ऐसा ना हो। और जब लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जब एक माँ को बालक का गर्भ ठहरता है, जब वहाँ एक कोशिका जाती है, दूसरी कोशिका उसके ऊपर बनती है, ये कोशिका मनुष्य की नहीं, अगली कुत्ते की और अगली बिल्ली की और अगला कुछ और, ये सीधे सीधे मनुष्य जाति की। और जब एक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा से जन्मा हो, तो वो कुछ और उसके जीवन में नहीं मिलाता। ये परमेश्वर का शुद्ध वचन है जो उस घड़ी में प्रमाणित हुआ। वो परमेश्वर का पूरा वचन लेता है, वो उसमें मत्सा नहीं मिलाता, इसमें कुछ नहीं मिलाता। ये सच्चा शुद्ध परमेश्वर का वचन है जो हमारे मध्य में प्रकट हुआ। बाइबल में देखिए, आप देखते हैं कहाँ तो हम किस युग में जीवित हैं। जब आप ये महान बातें देखते हैं जो घटित हो रही हैं, जब परमेश्वर ने इसे करने की प्रतिज्ञा की है, वो ये सदा करता है। हर युग के अंत में जब कलीसिया एक घुमाव के स्थान पर आ जाती है और ये वचन से घूमकर पाप और संसारिकता में चली जाती है। संसारिकता पाप है। बाइबल ने कहा, यदि तुम संसार और उसकी वस्तुओं से प्रेम रखते हो, तो परमेश्वर का प्रेम तुम में है ही नहीं। गत राती बोल रहा था, मैं बलिदान के विषय में बोल रहा था, जो कि चढ़ाया गया वो मेमना। ये 7 दिन तक होना था, 7 कलीसियाई कालों को दर्शाता है। और लोगों के मध्य में खमीर ना पाए जाए, 7 दिनों तक कोई खमीर नहीं। इसका अर्थ इसमें कुछ भी ना मिलाया जाए। ये निरंतर अखमीरा है, और हम कोई मत्सार नहीं चाहते, खमीर आदि हमें मिलाना, हम संसार को अपने में नहीं मिलाना चाहते। परमेश्वर के लिए ये अखमीरी रोटी होनी चाहिए, परमेश्वर का वचन, शुद्ध परमेश्वर का वचन, जो कि मनुष्य परमेश्वर के हर उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। हमारी नामधारी के तंत्र और विभिन्न चीजों ने हमें खमीर मिला दिया, ये या वो, और संसार, फैशन, ओ, ये इतना हो गया कि हर ओर हॉलीवुड है। अंततः ये आएगा, ये ब्रिटिश के समान हो जाएगा, और वेदी की बुलाहट लज्जाजनक हो जाएगी। ओ, जैसा एक भाई ने कहा कि आप नाव से मछली नहीं पा सकते, ये ठीक बात है। हमें सुसमाचार को संपूर्णता में प्रचारना है, परमेश्वर की सामर्थ के साथ ये प्रमाणित करने की, इस युग की प्रतिज्ञा के अनुसार ये सिद्ध किया कि ये ठीक परमेश्वर की इच्छा है। इसके बाहर आप केवल कलीसिया के सदस्य हैं, कोई मतलब नहीं कि आप कितना यत्न करें, आप परमेश्वर की सेवा का यत्न करें। आप सिलाई कढ़ाई के झुंड में जा सकते हैं, आप कलीसिया के प्रति निष्ठावान हो सकते हैं, परंतु जब तक आप में अनंत जीवन का जीवांश आप में नहीं ठहराया गया कि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बने, तो आप कुरूपता में बढ़ेंगे, परंतु कभी भी वास्तविक नहीं परमेश्वर के सच्चे पुत्र पुत्री। अक्सर मैं छोटे उकाब की कहानी सुनाता हूँ, जैसे एक बार किसान ने मुर्गी बिठाई और उसके पास, मैं आशा करता हूँ आपको धर्म विरोधी नहीं लगेगी, परंतु किसान ने मुर्गी बिठाई और वो बैठाने को एक अंडा कम था। मुझे संदेह कि कोई जानता है कि कितने अंडे बैठाने हैं, इसमें कितने होने चाहिए, परंतु जो भी है, एक अंडा कम था, पर्याप्त नहीं थे, इसलिए उकाब के घोंसले से चुरा लिया, उसके 2 अंडे थे, और उसने वो अंडा मुर्गी के नीचे रख दिया। जब वो उकाब उन चीजों के बीच निकला, तो वो विचित्र पक्षी था, वो मुर्गी की आवाज को समझ नहीं सका, उस प्रकार से बात ना कर सका जैसे कि वह उससे बातें करते सुनना चाहता था। और उसने भूसे के घेरे में पंजे चलाए, उस घेरे में से खाया, वो भोजन उसके लिए नहीं था, वो उनके मध्य में भोंडा चूजा था। मुर्गी बोलेगी और वो ना समझा, वो उधर जाती है और ये खा और वो खा, वो ये समझ ना पाया। एक दिन उसकी मम्मी यानी माँ, बल्कि आपके लिए मैं दक्षिण में हम मम्मी कहते हैं, इसलिए जो भी है वो, उसकी माँ जानती थी कि उसके 2 अंडे थे और उनमें से एक वहाँ पर था, वो दूसरे के लिए गई। उसने समझ क्षेत्र में चक्का लगाया और अंत में वो घेरे के ऊपर उड़ी। उसने उसे वहाँ बूढ़ी मुर्गी के पीछे पीछे चलते देखा, वो चिल्लाई, छोटे तुम चूजे नहीं हो, तुम उकाब हो। ये उसे सुनने में सही प्रतीत हुआ, क्यों वो आरंभ से ही उकाब था। और जब पुरुष या महिला उस मत्सार और ठंडे औपचारिक धर्म के नीचे बैठे होते हैं, यदि वो परमेश्वर का पुत्र होने के लिए ठहराया हुआ है और वो परमेश्वर का शब्द देखता है कि सामर्थ में प्रचारा गया है और परमेश्वर इसका समर्थन करता है, वो आरंभ से ही उकाब है, तो वो निश्चय ही इसकी ओर दौड़ेगा। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, वो इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसका स्वभाव परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है। मैं चिंता नहीं करता कि कौन क्या कहता है। जब वो परमेश्वर के वचन को प्रकट होते हुए देखता है, वो उधर ही उड़ता है क्योंकि वो छोटा उकाब है। और जैसे वे कहते रहते हैं, उसने कहा, माँ मैं यहाँ से कैसे ऊपर उठूँ, और उसने कहा, बस एक छलांग लगा, मैं तुझे उठा लूंगी। और केवल यही आपको करना है, अपने पैरों पर एक छलांग लगानी है, एक छलांग परमेश्वर की ओर, एक प्रतिज्ञा, प्रभु यीशु मैं आप पर पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ, मैं इस घड़ी के संदेश का विश्वास करता हूँ, मैंने इसकी पुष्टि होती देखी है, मैं जानता हूँ कि ये सही है, अपने पैरों पर कूदो, माँ तुम्हें पकड़ लेगी, चिंता ना करो, आप एक उकाब हैं, आपको लेने के लिए वो ठीक वहाँ पर होगी। अब हम ये अनुभव करते हैं कि हम एक जबरदस्त समय में हैं और एक महान समय, परंतु जब इस बाइबल का सत्य विश्वासियों ने इसका समर्थन होते हुए देखा, यही प्रमाण है कि परमेश्वर इसमें है। बिल्कुल, ये तब जो प्रतिज्ञा किया हुआ वचन, जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, प्रकट हुआ, बीज का किल्ला फूटा और वे इसे देखते हैं और वे इसका विश्वास करते हैं। दूसरे इसे नहीं देख सकते, जो भी है वे बैठेंगे और इसे देखते हैं। आप जानते हैं, मैंने भरसक यत्न से समस्त राष्ट्र में प्रचार किया है कि राष्ट्र में बाल कटी स्त्री नहीं होनी चाहिए, परंतु हर बार मैं वापस आता हूँ तो और होती हैं। क्या मामला है? कुछ गड़बड़ है। आप जानते हैं कि वचन कहता है, आप कहते हैं भाई इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, इससे अंतर पड़ता है। एक भला भाई है, उसने कहा, मैं आप पर हाथ रखने जा रहा हूँ, भाई ब्रैनम मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप अपनी सेवकाई चला रहे हैं, कहा उन स्त्रियों को ये बताने का आपका कोई काम नहीं है इस विषय में, कहा इसे पास्टर करें। मैंने कहा यद्यपि वैसे नहीं करते, मैंने कहा अब, उसने कहा भाई ये आपका काम नहीं है, आप केवल बीमारों के लिए प्रार्थना करें। मैंने कहा तो फिर ये किसका काम है? मुझे सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया गया है। कहा मैं आप पर हाथ रखूंगा और परमेश्वर से मांगूंगा कि इसे आपसे दूर कर दे। मैंने कहा मुझे भी आपके ऊपर हाथ रखने दें, समझे, और मैंने कहा मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपकी आंखें खोल दे और आप इसे देखेंगे, इसलिए ये ठीक है। उसने कहा आपको प्रचार करना चाहिए, लोग आपका विश्वास करते हैं कि आप सेवक परमेश्वर के नबी हैं। उसने कहा आपको स्त्रियों को ये सिखाना चाहिए कि महान महान वरदान कैसे प्राप्त करें और भविष्यवाणी और आदि आदि। मैंने कहा मैं उन्हें बीजगणित कैसे पढ़ा सकता हूँ जबकि वे अपने काका भी कभी विश्वास नहीं करते। ये ठीक बात है, इसलिए आप ये नहीं कर सकते, ये बस उसमें है। ये ठीक बात है, यदि आप साधारण चीजें भी नहीं कर सकते तो आप आत्मिक चीजें कैसे करने वाले हैं? स्वाभाविक चीजें, निश्चय ही। भाई बहनों, ये बात आपको चुटकुले जैसी सुन पड़ती है, परंतु ये सुसमाचार है, ये सुसमाचार का सत्य है, ये ठीक बात है। ध्यान दें, आज हम पाते हैं कि लोग, बहुत से लोग हैं जो इसका विश्वास नहीं कर सकते, यहाँ तक कि आत्मा से भरे लोग भी। अब मैं आपको एक देने जा रहा हूँ जो आपका सांस रोक देगा। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का अर्थ ये नहीं है कि आप अंदर जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, उस पर नहीं, इसका आपके प्राणों से कोई लेना देना नहीं है, ये बपतिस्मा है। देखा, यहाँ पर भीतर प्राण है, यहाँ अंदर, इसे परमेश्वर की ओर से आना है, परंतु फिर भी बाहर आपके 5 चेतनाएं हैं और 5 बाहर आपके भीतर की ओर, आपके पृथ्वी के घर से संबंध। भीतर आपके पास आत्मा है और इसमें आपके 5 निकास हैं, आपका विवेक और प्रेम और आदि आदि, उस आत्मा के 5 निकासी। स्मरण रखें, उस आत्मा में आप परमेश्वर की वास्तविक आत्मा का बपतिस्मा हो सकता है और फिर भी नष्ट। ये प्राण है जो जीवित रहता है, ये परमेश्वर का ठहराया हुआ था। क्या यीशु ने नहीं कहा उस दिन बहुत सारे मेरे पास आएंगे, कहेंगे प्रभु क्या मैंने प्रेत आत्मा नहीं निकाली, महान और सामर्थ्य कार्य किए, भविष्यवाणी, परमेश्वर के महान वरदान? उसने कहा मुझसे दूर हो जाओ हे कुकर्म के करने वालों, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। उस दिन बहुत से आएंगे। क्या कैफा ने भविष्यवाणी नहीं की? वो एक शैतान था। हम वहाँ पाते हैं और वे याजक, वे महान पुरुष, उन्हें उन दिनों के महान अगुए होना चाहिए था, दीनता और सब कुछ, परंतु परमेश्वर के वचन को देखने में असमर्थ, जो स्वयं उनके सम्मुख प्रकट हुआ। हम उनके एक झुंड को ले सकते थे। मैंने यहाँ लिख रखा है बलाम के विषय में क्या है, वो एक था। आप कहते हैं परमेश्वर अपना विचार बदलता है, वो अपना विचार नहीं बदलता। जब बलाम एक नबी के समान गया, वो वहाँ गया, एक बिशप, प्रचारक, आप जो भी उसे कहना चाहें, वो एक महान पुरुष था। परंतु जब उसने जाने के विषय में परमेश्वर से परामर्श किया और इसराइल को श्राप देना, वो उन्हें आरंभ से ही नहीं चाहता था, इसलिए उसने जाने को पूछा। परमेश्वर ने कहा मत जा। तब उन्होंने उच्च अधिकारियों को भेजा, संभव है बिशप या प्रेस्बिटर को या कुछ ऐसे ही, कहा बहुत शिक्षित कि उसे तैयार करें। वो वापस गया और परमेश्वर से फिर पूछा, आपको परमेश्वर से दूसरी बार नहीं पूछना है, जो परमेश्वर पहले कहता है वही है, आपको किसी चीज की प्रतीक्षा नहीं करनी है। रिबका ने दूसरी आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं की, उन्होंने उससे पूछा, कहा क्या तू जाएगी, उसे कहने दो, उसने कहा मैं जाऊंगी। वो पक्की रीति से परमेश्वर से प्रेरित थी, परमेश्वर के आत्मा के स्पंदन पर कार्य करने से वो बाइबल की एक रानी बन गई, जो कि उस पर हुआ था कि वो उस परम सत्य को स्वीकार करे, और उसने इसका विश्वास किया। और हम सही में बालाम को पाते हैं, वो नहीं देख सका, वो बाहर गया और लोगों को देखा, कहा अब जरा एक मिनट, यहाँ हम एक बड़े महान लोग हैं, तुम एक बिखरे हुए झुंड से, आप समझे, और हम सब एक ही परमेश्वर का विश्वास करते हैं, ये सत्य है। उन सब ने उसी परमेश्वर का विश्वास किया और सबने यहोवा की आराधना की। बालाम के बलिदान को देखें, सात वेदियां, परमेश्वर का सिद्ध अंक, सात कलीसिया काल, देखिए सात मेढ़े प्रभु के आगमन के लिए बोल रहे हैं। मूलतः वो आधारभूत था जैसा मूसा था, परंतु आप देखिए वहाँ कोई दिव्य समर्थन नहीं था, वहाँ वे दोनों भविष्य तकता थे, परंतु मूसा की सेवकाई में वहाँ अलौकिक अग्नि स्तंभ था, एक ज्योति जो पड़ाव के ऊपर था, वहाँ दिव्य चंगाई थी, वहाँ पड़ाव में राजा की आवाज थी, महान चिन्ह, दिव्य चंगाई, आश्चर्यकर्म और चीजें लोगों के मध्य में घटित हुई, वो जीवित परमेश्वर का चिन्ह उसके लोगों के मध्य में था। मूलतः वो दोनों ठीक थे, और बालाम ने लोगों को उकसाने का यत्न किया और इसमें सम्मोहित कर लिया, कब, प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने के थोड़ा सा पहले, अगले या दो दिन वे प्रतिज्ञा के देश में होते। परंतु अब मैं डरता हूँ, ये चिन्हित करना कठिन है, किसी दिन इसके लिए मुझे गोली मारी जाएगी, परंतु ये स्मरण रखें कि गिरजे की सार्वभौम संगठन द्वारा कलीसियाएं सम्मोहित की जाएंगी, वो आपके अधिकार को उसमें ले जा रहा है, कहते हुए आप एक ही झुंड के हैं, आप उस एक ही झुंड के नहीं है, उस चीज में से आप बाहर आ जाइए और अलग हो जाओ। निश्चय ही ये सत्य है, हमें इस चीज से अलग रहना है, जहाँ तक हो सकता है आप इससे अलग रहें। बालाम ने कहा हम हमारे बालक एक दूसरे से विवाह कर लें, क्योंकि कुल मिलाकर हम एक ही परमेश्वर का विश्वास करते हैं, कैसे दो एक साथ मिलकर चल सकते हैं जब तक कि वे सहमत ना हों? आप कैसे परमेश्वर के संग चल सकते हैं जब तक आप उसके वचन से सहमत ना हों? कैसे आप इसमें मत्सार आदि मिला सकते हैं जबकि आपको ऐसा ना करने के लिए ठहराया गया है, या आपको आज्ञा दी गई है कि ये ना करें? आप ये नहीं कर सकते, इसे करने का कोई मार्ग नहीं है भाई बहनों। आप उस खमीर को अखमीरे में नहीं मिला सकते, तेल और पानी नहीं मिला सकते, अंधेरा और उजियाला नहीं मिलेंगे। ज्योति इतनी शक्तिशाली है, ये अंधकार को हटा देती है, इसलिए हम इसे नहीं मिला सकते। न ही आप संसार का पाप एक साथ मिला सकते हैं, आप कलीसिया और नामधारी को एक साथ नहीं मिला सकते, आप कलीसिया और मत्सार को एक साथ नहीं मिला सकते, आप संसार और सुसमाचार को एक साथ नहीं मिला सकते, ये नहीं मिलेगा। उनके बीच से बाहर आ जाओ, परमेश्वर ने कहा अलग रहो, मैं स्वयं तुमको ले लूंगा, तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो गए, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। हम ये कभी नहीं कर सकते जब तक कि ये चीजें प्रकट ना हो जाएं और परमेश्वर का वचन इस घड़ी के लिए सत्य सिद्ध हुआ है। पद चिन्हों पर चलें, पेंटिकॉस्टल, इसी कारण लूथर ने अपना संदेश खोया, इसी प्रकार से वेस्ली ने अपना संदेश खोया। देखिए, यदि वेस्ली की कलीसिया चलती रहती तो वो पेंटिकॉस्टल होते, यदि लूथरन चलते रहते तो वो मेथोडिस्ट होते, समझे। अब यदि पेंटिकॉस्टल बढ़ते रहे तो ये दुल्हन होंगे, यदि आप पीछे रुक जाते हैं और वापस संसार में चले जाएं, जैसा कि आप जा रहे हैं, आप नष्ट हो जाएंगे, ये केवल भूसा और डंठल जलाने के लिए रहेगा, हम ये जानते हैं। वो अपने गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसे को ना बुझने वाली आग में जला देगा। यद्यपि ये ले जाने वाला रहा, निश्चय ही ये आगे बढ़ाकर ले गया, परंतु जैसे ही पत्ती बना, जीवन ने इसे छोड़ दिया, ये कुछ और बनने के लिए आगे बढ़ गया, जब तक ये अपने पूरे कद में नहीं आ गया। और इसी प्रकार से कलीसिया न्यायोचितता, पवित्रकरण और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से होती हुई आई वरदानों की वापसी और मसीह की शक्ल सूरत में बन गई। मसीह दूल्हा है और कलीसिया दुल्हन है, और दुल्हन दूल्हे का भाग है। इसे वचन की कलीसिया होना है, ना कि नामधारी कलीसिया। ये वचन कलीसिया होगा, ये वचन जो परमेश्वर के वचन के द्वारा समर्थन प्राप्त है। बालाम वो ये अंतर नहीं देख सका, बहुत से नहीं देख सकते। फिरौन ये नहीं देख सका, यद्यपि ये ठीक उसके सामने प्रमाणित हुआ। दातान ये नहीं देख सका, दातान आया और मूसा को देखा और जाना, वो वहाँ गया, बोला तुम ये सोचने का यत्न कर रहे हो कि झुंड में केवल तुम ही हो, सारी मंडली पवित्र है। परमेश्वर ने इस प्रकार का व्यवहार कभी नहीं किया, उसे तो उससे अधिक अच्छा जानना है। और उसने कहा, भाई सारी मंडली पवित्र है, तुम स्वयं को बनाने का यत्न कर रहे हो। यदि आज हम इसे कहते हैं गली का मुहावरा, समुद्र के किनारे की अकेली बटिया, मूसा जानता था कि परमेश्वर ने उसे वहाँ इस कार्य के लिए भेजा है। बस उसने कहा, प्रभु, मंदिर के द्वार पर गिरा और परमेश्वर ने कहा, अपने आप को उनसे अलग कर, और वो उनको निगल गया। और स्मरण रखें, वो पाप जो इसराइल ने किया बलाम के कहने के द्वारा, सब एक से हैं। इसराइल का वो पाप कभी क्षमा नहीं हुआ। और देखिए, मैं आपको एक चौंकाने वाला आंकड़ा दूं, 20 लाख जिन्होंने मिस्र छोड़ा, उनमें से 2 प्रतिज्ञा के देश में पहुंचे। उनमें से प्रत्येक ने एक ही चीज खाई, उन सब ने आत्मा में नृत्य किया, उन सब की हर चीज सामूहिक थी। परंतु जब अलग हो जाने का समय आया तो वचन ने अलग किया। ऐसा ही आज है, वचन अलग कर रहा है। उसने कहा, जब समय आता है, क्यों, यहाँ हम हैं, देखिए इतने समीप। बाइबल ने कहा, अंत के दिनों में 2 आत्माएं, मत्ती 24:24, इतने समीप होंगी कि यदि हो सके तो चुनौतियों को भरमा दें। भूसा एकदम गेहूं के समान दिखाई पड़ता है, परंतु ये गेहूं नहीं है, समझे, ये गेहूं नहीं है, परंतु ये ठीक वैसा ही दिखाई पड़ता है, समझे, इतना समीप कि ये चुनौतियों को बहका दे। आप नामधारी बन गए और नामधारी में चले गए और सूख गए और मर गए, और गेहूं इसमें से होते हुए आगे बढ़ गया, समझे, ये बिल्कुल ठीक है, ये ले जाने वाला है, परंतु गेहूं नहीं। स्मरण रखें, गेहूं आगे बढ़ता रहता है पुनरुत्थान में। गेहूं की सारी सामर्थ्य सीधी गेहूं में आ जाएगी, जैसे कि ये सिर बनने जा रहा है कि उस महान पुनरुत्थान में आ जाए। कभी क्षमा नहीं किया गया। हम यहाँ एक क्षण के लिए रुकें। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपकी सांस नहीं रोकूंगा। मेरी ओर देखें, मैं आपसे एक बात पूछूं, हम जरा इसे लें उदाहरण के लिए, ये सही रहेगा। जब कीटाणु पुरुष और स्त्री से आते हैं, यदि आपने कभी परख नली के विषय में जाना हो या पशुओं की मिलावट आदि करनी हो, आप पाएंगे कि नर के उत्सर्जन से लाखों शुक्राणु आते हैं और मादा के उत्सर्जन से लाखों अंडे आते हैं। परंतु क्या आपको मालूम है कि वहाँ केवल एक उपजाऊ है? वे छोटे बछड़े या वो जो भी हैं, इन लाखों जीवांशों में, लाखों जीवांश, वहाँ केवल एक ही छोटा जीवांश उन बाकियों सब में से स्वयं में कार्य करेगा और आगे बढ़कर और उपजाऊ अंडा ढूंढेगा और उसमें चला जाएगा और बाकी मर जाएंगे। उनमें से एक जीवन के लिए ठहराया हुआ है, बाकी दूसरे नहीं, यद्यपि वह सारे एक से हैं, लाखों में से एक। क्या हो यदि आज रात्रि भी इस प्रकार से हो? वहाँ 50 करोड़ मसीह होने चाहिए, मैं समझता हूँ इस संसार में लगभग इतने या इसके आसपास। यदि आज रात्रि स्वर्गारोहण हो तो बस इन जीवितों में से 500 लोग होंगे। इतने तो किसी भी दिन चले जाते हैं, लगभग वे इसको गिन ही नहीं सकते। दुल्हन उठा ली जाएगी और हम आश्चर्य करेंगे, ये सब क्या है, और लोग प्रचार के लिए जा रहे होंगे, कह रहे होंगे उन्हें ये वो मिल रहा है, और देखिए क्या होगा, क्या ही धोखा होगा। कहिए यदि ये ऐसा है, होगा, मैं नहीं कहता ये ऐसा है, मैं नहीं जानता, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं, परमेश्वर इसका न्याय है। परंतु देखिए ये कितनी सरलता से हो सकता है, सारी गिनतियाँ और ये चीजें, ये कैसे सिद्ध किया जा सकता है? कोरह इसे क्यों ना देख सका? दातान इसे क्यों नहीं देख सका? अहाब इसे क्यों ना देख पाया? जब यहोशापात अहाब के पास गया, उसने कहा, अहाब ने, हम संकट में हैं, तुम जानते हो परमेश्वर ने ये भूमि हमें दी है, यहोशू ने इसे बांटा है, तुम जानते हो भूमि का ये भाग अरामियों सीरियों ने ले लिया है, क्या ये हमारी भूमि नहीं? हाँ, हमारे बालक भूखे हैं और अरामी हमारे शत्रु अपने बालकों को खिला रहे हैं, उनके पेट गेहूं से भर रहे हैं, जो हमारा होना चाहिए, ये वचन के अनुसार ठीक है। कहा, क्या तुम मेरी वहाँ जाने में सहायता करोगे कि उसे ले लें? अब कभी कभी एक अच्छा व्यक्ति बुरे के प्रभाव में आ जाएगा। भली प्रकार से ध्यान दें, कलीसिया ध्यान से देखे। पहली बात आप जानते हैं, यहोशापात एक बड़ा धर्मी होने के नाते उसने कहा, ठीक है, निश्चय ही हमें जाना चाहिए अपनी कलीसिया के लिए, हम सब एक ही लोग हैं। परंतु वे एक लोग नहीं थे, नहीं, उसने कहा, भाई हमारी कलीसिया तुम्हारी कलीसिया है, हमारे लोग तुम्हारे लोग, निश्चय ही हम जाएंगे। उसने कहा, परंतु पहले हम प्रभु से पूछें। इसलिए उसने कहा, ओ अहाब, कोई संदेह नहीं, हमें इस विषय में सोचना चाहिए, भाई हम करेंगे, क्या कोई प्रभु का भविष्य दखता है? कहा, मेरे पास उनसे भरा हुआ धर्म विद्यालय है, यहाँ मेरे पास 400 हैं, वे सबसे अच्छे वाले हैं, वे सब PhD LLD हैं, वे दुगनी LD हैं, और इसके साथ सब कुछ है वहाँ, हर एक, अब स्मरण रहे, वे हिब्रू भविष्य दखता थे, भविष्य दखताओं के विद्यालय से। कहा, उन्हें बुला लाओ, जरा उनकी सुने। अब मैं विश्वास करता हूँ कि ये सिद्ध किया था, बिशपों के ऊपर बड़ा अध्यक्ष उन सब पर वहाँ आया, और उससे प्रेरणा हुई, उसे प्रेरणा थी पूर्णतः, वो वहाँ आया और स्वयं लोहे के 2 सींग बनाए और कहा, तुम जानते हो यहोवा यूँ कहता है, तुम ये सींग लेने जा रहे हो और अरामियों को देश से बाहर धकेल दो। उन सब ने भविष्यवाणी की, ये बिल्कुल ठीक बात है, उनमें से प्रत्येक समस्त धर्म विद्यालय से सहमति में, समझे, अहाब ने कहा, आप देखिए यहोशापात एक प्रकार से आत्मिक, आप जानते हैं, वो कुल मिलाकर सूखा नहीं था। उसने कहा, परंतु क्या यहाँ कोई और नहीं है कहीं भी जिससे हम परामर्श लें? दूसरे से तुम क्या सलाह लेना चाहते हो? जबकि समस्त एकतावर्धक समस्त संगठन ये कहता है, ये ठीक है, मुझे क्षमा करें। कुल मिलाकर कहा, यही जो हमें करना है, समझे, यही जो हमें करना चाहिए। उसने कहा, परंतु यहाँ कोई और है दूसरा? आप जानते हैं वो विचित्र है। उसने कहा, हाँ एक है, इमला का पुत्र मिकाया, परंतु मैं उसे घृणा करता हूँ। सदा इसी प्रकार से है, मैं उसे घृणा करता हूँ क्योंकि वो सदा हमारे लोगों पर चिल्लाता है और मुझे कोसता है, मेरे विषय में भला बुरा कहता है, मुझे उस व्यक्ति से घृणा है। कहा, आह राजा ऐसा ना कहे, कहा जाओ उसे बुला लाओ। इसलिए वे वहाँ इमला के पुत्र के पास गए, उनमें से कुछ बिशप लोग या कुछ बड़े लोग वहाँ जाकर कहा, अब सुनिए, क्या तुम संस्था में फिर वापस आना चाहते हो? तुम वही बात कहना जो वे कहते हैं, वे तुम्हें वापस ले लेंगे। परंतु ऐसा हुआ कि परमेश्वर का एक जन था जिस पर वे अपना हाथ नहीं रख सके, परमेश्वर का हाथ उस पर था, वो तो बस परमेश्वर की सच्चाई का दर्पण था। कहा, निश्चय ही, कहा मैं जाऊंगा, परंतु मैं केवल वही कहूंगा जो परमेश्वर मेरे मुख में डालेगा, वहाँ परमेश्वर का जन है। उसने कहा, मुझे एक रात्रि का समय दो। इसलिए रात आई और प्रभु नबी से बोला, बेचारा कुछ भी नहीं। पहली बात आप जानते हैं, वो अगली प्रातः आया। कहा, इस विषय में क्या है इमला? उसने कहा, जाओ चढ़ जाओ। कहा, परंतु मैं इसराइल को पहाड़ों पर भेड़ों की नई तितर बितर देखता हूँ जिनका कोई चरवा ना हो। उसने कहा, मैंने आपसे क्या कहा, मैं इस विषय में आपसे क्या कहा था? और उसने कहा, तब बड़ा बिशप चढ़कर आया और उसने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा, बोला, परमेश्वर का आत्मा किधर गया? क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे पास आत्मा था, मैं इसमें नाचा, मैंने सारी चीजें की, आत्मा मेरे ऊपर था, ये किधर गया? अब देखिए, इमला परमेश्वर का पुत्र होने के कारण परमेश्वर का एक वास्तविक नबी, उसने अपने दर्शन को वचन से परखा। यदि ये वचन के साथ नहीं था तो ये गलत था, समझे, उस घड़ी के लिए वचन देखा। स्मरण रहे, ये एक वचन था जिसके कारण सारी गड़बड़ी आ गई। हवा ने परमेश्वर के एक वचन का अविश्वास किया। बाइबल में पहले ही एक वचन के कारण परेशानी हुई। यीशु बाइबल के बीच में आया और कहा, मनुष्य परमेश्वर के हर वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। बाइबल के अंत में कहा, जो भी एक वचन निकाले या एक वचन इसमें मिलाए। ये सुसमाचार का भाग नहीं, मेथोडिस्ट के पास एक भाग है, बैप्टिस्ट प्रेसबिटेरियन और आदि आदि उनके पास इसके भाग हैं, कैथोलिक के पास इसका भाग है, यहोवा विटनेस और बाकी सारे। परंतु ये समस्त वचन, सारा वचन, समय का वचन जो कि अर्थ रखता है, और हम ये कभी नहीं करेंगे जब तक परमेश्वर भविष्यद्वक्ता का अभिषेक न करे जो खड़ा हो सकता है और इसे बताए और उसकी पुष्टि करे और सिद्ध करे ये सही है। ये लोगों के मध्य में जाएगा और वे इसे कभी न जानेंगे जैसा कि ये सदा से रहा। आप कैथोलिक को, जैसे जॉन ऑफ आर्क, तुमने उसे जीवित जला दिया जादूगरनी के नाते, बाद में तुमने उन याजकों की लाशों को खोदा 200 वर्ष पश्चात और उन्हें नदी में फेंक दिया। तुमने संत पैट्रिक को नहीं जाना और बाकी उनको, ये फिर तुम्हारे मध्य से हो जाएगा। पहली बार तुम जानते हो परमेश्वर इसे करेगा और तुम्हें कभी ये मालूम भी ना पड़ेगा कि ये हो गया। देखिए, ये बीच में से निकल जाता है और अपनी दुल्हन को लेता है और उसे ऊपर उठा लेता है और चुरा लेता है, ठीक लोगों के बीच में से। हम पाते हैं इस छोटे मिकाय ने कहा, उसने परखा, वो जान गया कि परमेश्वर ने कहा था इसके पहले एक सच्चे भविष्यद्वक्ता से, उसके पहले की भविष्यद्वक्ता से। उसने क्या कहा? उसने कहा आहाब, क्योंकि तूने धर्मी का लहू बहाया, यानी धर्मी नबोध का लहू, कुत्ते तेरा लहू भी चाटेंगे और इजाबेल। और ये बिल्कुल सही है, ये तो घटित होना ही था क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा। तो वो नबी कैसे अच्छी भविष्यवाणी कर सकता है जबकि वो इसके विरोध में बुरा है? मैं कैसे इस लुदिकियन कलीसिया युग के लिए अच्छी बातें बता सकता हूँ जबकि परमेश्वर इसके विरुद्ध बोला है? तुम नंगे बेचारे, तुम कहते हो मैं धनी हूँ, मैं अच्छा, मेरे पास मेथोडिस्ट और वो सब और प्रेस्बिटेरियन जैसी कलीसिया हैं, ये मेरे पास हैं, ये वो है, सबसे अच्छा ये वो और है, ये ठीक बात है, परंतु नहीं जानता कि तू नंगा, अंधा और बेचारा है उस वास्तविक चीज के लिए जो परमेश्वर प्रकट कर रहा है। ये तेरे सामने से होकर निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा, समझे लोगो, इसके पहले की देर हो जाए, विश्वास कर लो। अब हम पाते हैं कि उसने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा, परमेश्वर का आत्मा किस ओर गया? मिकाया ने कहा, मैं परमेश्वर को सिंहासन पर विराजमान देखता हूँ। और उसने स्वर के प्रतिनिधियों को बुलाया, कौन नीचे जाकर और अहाब को धोखा दे सकता है, बोला, और एक झूठी आत्मा आई और परमेश्वर के सम्मुख दंडवत किया, एक झूठी। और स्मरण रहे, वो झूठी आत्मा उन भविष्यद्वक्ताओं में बैठ गई। उन्हें तभी मालूम हो जाना चाहिए था कि ये आत्मा परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, परंतु वे इतने दूर हो गए थे क्योंकि वे राजा के भविष्यद्वक्ता थे, क्योंकि उनके पास हर अच्छी चीज थी। और यही आज कलीसिया ने किया है, आप पुराने ढंग के अनुभव से अलग हो गए हैं जो तुम्हारे पास वर्षों पहले थे जब तुम गली के कोने पर खड़े और सुसमाचार प्रचार करते थे। स्वयं को संस्था से बाहर निकालो और स्वयं में स्वतंत्र लोग कहलाओ, नहीं, क्योंकि तुम इसमें फिर लिपट गए, जैसे सुअर ने कीचड़ में या कुत्ता अपनी उल्टी को। यदि इससे पहली बार उल्टी उत्पन्न हुई, ये दूसरी बार भी उल्टी करवाएगा। ये ठीक बात है, परमेश्वर आपको अपने मुंह से थूक देगा। उसने कहा तू गुनगुना है ना, तू गर्म या ठंडा। थोड़ी सी सभाएं, फिर कुछ थोड़ा सा संगीत, थोड़ा सा गाना, ये जब ये बहुत ही ये मसीहत के लिए अशोभनीय हो गया है। मेरे पुत्र ने उस दिन फोन पर कहा टेलीविजन देखूं, मधुमक्खियों के समान गा रहे हैं जहां लोग आए, छोटे अपराधों के झुंड वहां खड़े हैं, नाचने वालों के समान हिल रहे हैं, उन भक्ति गीतों का गा रहे हैं। ये यीशु मसीह के लिए अशोभनीय है। यहाँ कलीसिया में कोई गंभीरता नहीं है, ये ऐसा प्रतीत होता है ये कुछ नाचने जैसा हो गया है और एक फैशन दिखावा। बजाय जीवित परमेश्वर की कलीसिया, जहाँ यीशु मसीह सामर्थ्य में स्वयं को प्रकट कर सके, ऐसा लगता है कहीं कोई गड़बड़ है। वे हट गए और बाइबल ने कहा ये इस प्रकार से होगा, समझे, देखिए कि आप कहाँ हैं, सावधान हो इसके पहले कि देर हो जाए, जाग जाओ। अब हम पाते हैं उसने कहा हम किसको वहाँ भेज सकते हैं और आहाब को बहकाए कि उसे वहाँ पहुँचाए कि भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो। देखिए यदि भविष्यद्वक्ता ने एक वचन कहा तो स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु ये असफल नहीं हो सकता, इसे तो होना ही है, इसलिए इसे तो घटित होना ही है। उसने कहा इस व्यक्ति को अंदर वाले कारागार में बंद कर दो और इसे दुख की रोटी खिलाओ और दुख का जल, और जब मैं शांति से लौटूंगा तब मैं इसकी सुधि लूंगा। मिकाया वहाँ अड़ा रहा, ये जानते हुए कि उसके पास परमेश्वर का आत्मा है, उसकी भविष्यवाणी और दर्शन सही थे, उसका संदेश सही था, क्योंकि ये यहोवा यूं कहता है उन दर्शनों से, यहोवा यूं कहता है वचन से, इसे ठीक होना ही था, यहोवा यूं कहता है था। उसने कहा यदि तू वापस आ गया तो परमेश्वर मुझसे कभी नहीं बोला, और आप जानते हैं क्या घटित हुआ, निश्चय ही आप देखिए, समझे भाई, सुनिए, निश्चय ही कैफा इसे नहीं देख सका। क्यों उसने नीचे नहीं देखा, वो एक बिशप था, वो कुल मिलाकर सारी कलीसियाओं का पोप था, वो क्यों नहीं यीशु को वहाँ पर खड़ा हुआ देख सका, वो क्यों नहीं समझ सका, जबकि वे 23वां भजन संहिता गा रहे थे, 22वां भजन कलीसिया में, और मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, और वो वहाँ पर क्रूस पर लटका हुआ था। वही पवित्र वचन, वही परमेश्वर जिसकी वे आराधना कर रहे थे, वे उसे दोषी ठहरा रहे थे, उसे धर्मांतरता के लिए मार रहे थे। यही है, इससे आपको झटका लगेगा यदि मैं आपको बताऊंगा, यही है जो फिर से दोहराया जा रहा है। बाइबल ने कहा वो बाहर था, खटखटा रहा है कि भीतर आए, और उसे कोई भीतर आने ना देगा। वो जिससे मैं प्रेम रखता हूँ, मैं ताड़ना और डांट लगाता हूँ, मैं उसे डांटता हूँ, मैं उसे झकझोरता हूँ, केवल इसलिए कि मैं उससे प्रेम रखता हूँ। खोल दे और उसे भीतर आने दे। जी हाँ, नहीं सके, स्मरण रखें, मैं कलीसिया में नहीं आना चाहता, ये व्यक्तिगत है, वो कलीसिया में नहीं आ सकता, उसे बाहर कर रखा था, केवल तब उनकी सारी संस्थाएं, ये कलीसिया युग है कि वो कलीसिया से बाहर है, बाहर कर दिया, मना कर दिया, तिरस्कृत, क्योंकि वो अस्थाई रूप से दूसरी कलीसियाओं में प्रकट हुआ न्यायोचितता के रूप में और आदि आदि, परंतु यहाँ ये युग जिसमें वो आ रहा है यीशु मसीह के प्रकटीकरण का प्रमाण है, वो कल आज और सर्वदा एक सा है। ओ मैं ये स्वीकार करूंगा हमारे पास बहुत सारे नकल करने वाले हैं, परंतु पहले वाले को परखें, मूल वाले को। मूसा परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ नीचे गया ताकि इज़राइल को छुड़ाए, और जब उसने ये किया तो उसने कुछ आश्चर्यकर्म, नकल करने वालों ने उसका अनुकरण किया। यदि वे पहले थे तो वो नकल करने वाला होता। देखिए उनके पास परमेश्वर का वचन था और प्रभु ने उसे प्रमाणित किया, वो बस शांत रहा। और आप जानते हैं कि इस चीज की अंत के दिनों में प्रतिज्ञा है, जैसे जम्ब्रेस और जेन ने मूसा का सामना किया, इसी प्रकार से ये भ्रष्ट विचारों के मनुष्य सत्य के विषय में। और जब एक संस्था रखती है, एक मनुष्य को संस्था के द्वारा लेती है, तो ये दर्शाता है कि ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ये चीजें लोगों के विचारों को आकर्षित करने के लिए की और फिर संदेश आया। यदि ये नहीं है तो ये परमेश्वर का नहीं है, ये परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर सदा ये करता है। यहूदा इसे नहीं समझ सका, वो उसके साथ सा चला, उसने ये नहीं देखा, परंतु परमेश्वर का वास्तविक अभिषेक, वास्तविक जीवांश, एक प्राण परमेश्वर का जो परमेश्वर में था, पृथ्वी के रचने से पहले था। स्मरण रखें, आप जिनमें वास्तव में परमेश्वर का आत्मा आज रात्रि आप में है, आप यहाँ मसीह में थे, क्योंकि वो वचन की परिपूर्णता था, वो परमेश्वर की सदैव परिपूर्णता था, परमेश्वर मसीह में था, संसार को स्वयं में वापस मिला रहा था। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? देखिए वो मसीह में था। तो फिर यदि आप परमेश्वर में थे, एक जीवांश जीन, एक वचन आरंभ से एक फल, तो फिर आप उसके साथ यहाँ पृथ्वी पर चले, आपने उसके साथ यहाँ पृथ्वी पर बातें की, आपने यहाँ पृथ्वी पर उसके साथ दुख उठाया, आप उसके संग कलवरी पे मरे और आप फिर उसके साथ जी उठे, और अब आप स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु के संग बैठे हैं। वचन, जैसा कि ये आपके प्राण में आपको खिलाता है, मनुष्य हर वचन के साथ जो निकलता है जीवित रहेगा, न कि मेथोडिस्ट का वचन बैप्टिस्ट का वचन स्मरण रहे। यदि बलिदान में कुछ छुटा है तो इसे भोर होने से पहले जलाना है, क्योंकि कल दूसरा कलीसिया युग होगा, ठीक है ना? निकास ये सत्य है, एक प्रतीक बलिदान की छाया। द्वार, कहाँ मैं एक स्थान बनाऊंगा? तुम हर द्वार पर मेरी आराधना नहीं करोगे जो मैंने तुम्हें दिया, परंतु केवल एक द्वार है और उस द्वार में मैं अपना नाम रखूंगा। और जहाँ प्रभु अपना नाम रखेगा वही स्थान है जहाँ परमेश्वर आपके बलिदान को स्वीकार करेगा। हमने सब प्रकार के द्वार बना लिए हैं, परंतु परमेश्वर ने एक द्वार बनाया है। परमेश्वर एक द्वार बनाता है और वो द्वार संत यूहन्ना 10वां अध्याय, यीशु ने कहा मैं वो द्वार हूँ। परमेश्वर ने अपना नाम यीशु में रखा, क्या आप इसका विश्वास करते हैं? वो परमेश्वर का पुत्र था, हर पुत्र अपने पिता के नाम से आता है। उसने कहा मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे स्वीकार नहीं करते। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ, आप अपने पिता के नाम से आए हैं। यीशु अपने पिता के नाम से आया, इसलिए उसके पिता का नाम यीशु है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो अपने पिता के नाम में आया। तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, दूसरा आएगा और उसे तुम ग्रहण करोगे। तुम अपने नामधारियों को लोगे और उनके साथ हो जाओगे, बस बढ़ते जाओ। बाइबल ने कहा वे इसलिए तैयार किए गए हैं कि इस स्थान को भरें, अंधे नंगे और ये नहीं जानते। कलीसिया धर्म, ओ वही धर्म, वैसे जैसे केन था, बलिदान किया, सब कुछ वही किया जैसे हाबिल ने किया, परंतु प्रकाशन के द्वारा उस पर प्रकाशित किया गया कि परम पवित्र क्या है, ना कि मैदान के फल या कुछ अपने हाथों के द्वारा करना। विश्वासी देख सकता है कि वचन देहधारी हुआ, दूसरे ये नहीं कर सकते। वे सारे इजरायली मूसा को ये सब करते हुए देखने के पश्चात और उस महान मंशा पर लाने के पश्चात जहाँ ये होना था, उनमें से प्रत्येक ने कहा हम तो बालाम के साथ जाएंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि डॉक्टर बालाम ठीक है, वो चतुर है, अधिक शिक्षित है और सब कुछ, इसलिए हम उसे लेंगे। और परमेश्वर ने उन्हें कभी क्षमा नहीं किया, उसने उन्हें वही जंगल में नाश कर दिया। और यीशु ने स्वयं कहा वे कभी भी नहीं आएंगे, उनमें से कोई भी नहीं बचा। यीशु ने कहा, उन्होंने कहा हमारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया 40 वर्षों तक, उसने कहा उनमें से प्रत्येक मर गया, परमेश्वर से सदा के लिए अलग, उनमें से प्रत्येक मर गया, निश्चय ही क्योंकि उन्होंने एक गलत को सुना, जबकि मूसा परमेश्वर से समर्थन प्राप्त प्रतिज्ञा के देश की राह दिखाने वाला, और बहुत दूर तक वे ठीक आए, परंतु फिर वे उसके साथ न चलेंगे। अब विश्वासी इसे देख सकता है, परंतु अविश्वासी इसे नहीं देख सकता कि प्रमाणित है। देखिए कैफा कितना पवित्र था, देखिए वे सारे याजक वे कितने भक्त थे, और यीशु घूमा, कहा तुम अपने पिता शैतान से हो और तुम उसके कामों को करोगे, परंतु वहाँ थोड़े से विश्वासी बैठे हुए थे। क्या आप सोचते हैं कि जब यीशु ने कहा कि मैं और पिता एक हैं, वे समझ गए थे? वे इसकी व्याख्या नहीं कर सकते थे। जब उसने कहा जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं, क्या वे इसकी व्याख्या कर सके? नहीं, परंतु उन्होंने इसका विश्वास किया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को प्रमाणित होते हुए और देह में होते हुए देख लिया था। यीशु ने कहा यदि मैं अपने पिता के कार्य न करूं तो मेरा विश्वास मत करना, परंतु यदि मैं अपने पिता के कार्य करता हूं तो वचन जिसकी भविष्यवाणी मेरे करने के लिए है, तब तुम, यदि तुम मेरा विश्वास नहीं कर सकते तो मेरे कार्यों का जो मैं करता हूं विश्वास करो, ताकि तुम बचाए जा सको, समझे? यीशु ने कहा मेरी भेड़ मेरा शब्द जानती है, वे मेरे वचन जानते हैं, जब इसे उस युग के लिए प्रमाणित किया जाता है वे इसे देखते हैं। ठीक है, कैफा भी शब्द को जानता था, परंतु उस युग के वचन को नहीं। उसके पास वो वचन था जो फरीसियों ने उसके अंदर डाला था, परंतु उस घड़ी का प्रमाणित वचन नहीं। वे मेरी आवाज जानते हैं, वे मेरा चिन्ह जानते हैं, वे मेरे आश्चर्य कर्म जानते हैं। अब कैसे कि ओ हम अपने मूल पाठ पर वापस आएं, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो इस वचन का बहुत सारा छूट जाएगा, क्योंकि जो भी है मुझे अगले कुछ मिनटों में बंद करना है, क्योंकि कुछ मिनटों में 10 बजने वाले हैं। मैं उससे प्रेम करता हूँ। मित्रों, आप जो उस गलियारे से आए और थोड़ी देर पहले आपने भेंटे डाली, वे लोग जिन्होंने मेरे बालकों को खिलाया, उनको वस्त्रों से ढांका, लोग जिन्होंने अपने पैसे दान पात्र में डाले, आप जिन्होंने कठिनाई से कमाया, जानते हैं कहाँ जाता है? ये सागर पार उन मूर्ति पूजकों के पास जाने में मेरी सहायता करता है, जिन्होंने परमेश्वर के विषय में कभी कुछ नहीं जाना, यही जो मैं इससे करता हूँ। हर पाई परमेश्वर मेरा न्यायी है, यहाँ मेरे कुछ हैं, हर व्यक्ति ठीक यहाँ बैठा है मेरी कलीसिया का खजांची, मुझे $100 प्रति सप्ताह मिलता है, और यही है बाकी समुद्र पार की सभाओं के उत्तरदायित्व के लिए जाता है जहाँ से वे नहीं आ सकते। कलीसियाएं मुझे नहीं लेंगी, वे मुझे नहीं चाहते, नहीं ये ठीक बात है, उन्होंने मुझे नाम दे दिया है, वे कहते हैं वो ओनली जीसस है, या ऐसा ही कुछ, या कुछ विधर्मी धर्मांधता, या इस प्रकार से एक जिजाबेल, और मैं देखता हूँ वे मेरे प्रभु को इजाबेल कहते हैं, और उन्होंने कहा इजाबेल नहीं बालजबूब, उन्होंने उसे हर बुरे नाम से पुकारा। यदि उन्होंने घर के स्वामी को बालजबूब कहा तो वो उसके चेलों को और कुछ क्या न कहेंगे, इसलिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। और आप स्वयं परमेश्वर की सहायता से आप सोचते हैं, मैं यहाँ एक बड़ा ढोंगी खड़ा हूँ और आपको कुछ बताऊँ, या ये उन पंक्तियों के साथ मेल नहीं खाएगा यदि मैं सोचता हूँ, मैंने सोचा ये परमेश्वर की ओर से है। परंतु यदि मैं आपसे प्रेम करता हूँ और जानता हूँ कि सत्य क्या है, क्या आपने कभी सुना जो मैंने कभी कोई बात प्रभु के नाम से कही घटित नहीं हुई? नहीं, मैं किसी से भी पूछता हूँ, हजारों बातें कही गई हैं, वे सारी के सारी घटित हुई। उस समय को स्मरण रखें जब सैमुएल बुलाया गया और मैं विश्वास करता हूँ वो था और उसने कहा इसराइल स्वयं को उन दूसरे राष्ट्रों के समान बनाना चाहता है। और यही आप पेंतिकॉस्टल पर आ रहे हैं, आप उन बाकी लोगों के समान व्यवहार करना चाहते हो, आप उन जैसे लोग नहीं हैं, इससे अलग रहें। बड़ी कलीसियाएं, बड़ी अच्छी चीजें, वो भाइयों ऐसा ना करें। हम यीशु का आगमन निकट है, ये प्रचार करते हैं। आइए हम बाहर कार्य क्षेत्र में जाएं और मूर्ति पूजकों पर ध्यान दें। देखिए इस विषय में कुछ करें। परंतु आप देखिए, सैमुएल ने कहा क्या मैंने कभी भी एक बार तुम्हारा कोई पैसा लिया अपने जीवन यापन के लिए? उन्होंने कहा नहीं सैमुएल, तुमने ऐसा कभी नहीं किया। कहा क्या मैंने तुमसे कोई ऐसी बात कभी बताई प्रभु के नाम में जो घटित ना हुई? वो ये ठीक बात है सैमुएल, हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ भविष्यद्वक्ता है। जी हाँ श्रीमान, हर बात जो तूने कही घटित हुई सैमुएल, परंतु जो भी है हम ये चाहते हैं। आप देखिए क्या घटित हुआ। ओ भाइयों, पवित्र वचन बार बार अपने आप को दोहराता है वचन में होते हुए, क्योंकि परमेश्वर के कार्य करने की यही विधि है। आप समझे? देखिए आप ऐसे ही समय में हैं। आइए जल्दी से अपने मूल पाठ पर चलें। इस सारे समय में अपने मूल पाठ पर अभी नहीं आया हूँ, ये मेरे हृदय पर है। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, संसार के साथ नष्ट न हो। यदि आप संसार के हैं तो आप संसार के साथ नष्ट हो जाएंगे, यदि आप परमेश्वर के हैं तो आप उसके संग पुनरुत्थान में चले जाएंगे। इसलिए आज रात्रि अपना स्वभाव बदल लें, संसार के प्रेम और संसार की वस्तुओं से और ये सारे मत्सार और चीजें सीधे सीधे कलवरी पर अपने बलिदान पर दृष्टि रखें और उसे उसी आधार पर मिले, क्योंकि केवल वही स्थान है जहां कभी वो आपको मिलेगा। मेथोडिस्ट कहते हैं ये हमारी कलीसिया में है, बैप्टिस्ट कहते हैं और पेंटिकॉस्टल और ये प्रेस्बिटेरियन और ये, परंतु उसने कहा मैं उनसे एक ही स्थान में मिलूंगा, वो स्थान जहां मैंने अपना नाम रखा है, वो यीशु मसीह में, यही जहां परमेश्वर ने अपना नाम रखा है, केवल यही स्थान है, वो आपसे मिलेगा। और ये मसीह वचन है, कल वैसा ही था, ये पैरों से बढ़ता हुआ जांगे और अब ये सिर पर है, जाने के लिए तैयार, दुल्हन के पूरे रूप में प्रकट हो रहा है, वैसे ही जैसे दूल्हा। अब आइए अपने मूल पाठ पर चलें जल्दी से, लगभग 10 मिनट में और फिर हम बंद करेंगे। अब हमारा मूल पाठ, हम इस पर विचार करते हैं। ये फिर से घटित हुआ, जैसा कि हमारा मूल पाठ, जैसे कि ये अक्सर घटित हुआ, परमेश्वर ने अपना भविष्यद्वक्ता भेजा, जैसे कि वो मलाकी 3 में वचन की प्रतिज्ञा है, एक दूत को मैं अपने आगे आगे उसके आगमन से पहले भेजता हूँ। अब यदि आप इसे प्रमाणित करके समर्थन देना चाहते हैं, मत्ती का 11वां अध्याय इसी का समर्थन करता है। जब यूहन्ना के चेले आए और यीशु को देखकर बोले यूहन्ना जेल में है, कहा हम ये पूछने आए हैं कि वो यूहन्ना की उकाब की आंखें ढाकी गईं और वो जेल में था, वो मरने पर था। कहा जाकर उससे पूछो। देखिए यूहन्ना ने कहा ओ उसका सूप उसके हाथ में है, वो उसे भली भांति साफ करेगा। उसने सोचा सहस्रशताब्दी अभी आरंभ होगा, उसने सोचा बीज तैयार था, परंतु उसे मरना था और डंठल में जाना था और फिर आकर एक सच्ची दुल्हन को बनाना था। इसलिए उसने कहा वो अपने गेहूं को खत्ते में जमा करेगा और आग से जलाएगा। इस पर ध्यान दें, उस युग में मसीह के आगे चलने वाला जो उसने कहा उसे घटित होना ही था। बीज, और मैं आशा करता हूं कि आप सो नहीं रहे हैं, बीज यहां पर है, इसे खत्ते में जमा किया जाएगा। ये वो दुल्हन है, उसका वो भाग, परंतु उसने जो कहा वही डंठल के साथ होगा, ये ना बुझने वाली आग से जलाया जाएगा। अब उद्धार को ढूंढ लें, जबकि आप ढूंढ सकते हैं, बीज बने ना कि डंठल, समझे, जीवन में आए ना कि ठंडे रूप में, मसीह के जीवन में जाएं। वचन प्रकट हुआ इस प्रकार प्रमाणित हुआ, ये है, ये एकत्र होने का समय है, कटाई आ रही है। बेहतर होगा कि आप बीज में आ जाएं, क्योंकि भूसा पीछे छोड़ दिया जाएगा। अब हम पाते हैं कि ये घटित हुआ है, यीशु अपने अवतरण को पूरा करते हुए, ये मत्ती 11, देखिए उसने यूहन्ना को नहीं दिया, वो कहता है कि प्रतीक्षा करे कि मैं यूहन्ना के लिए पुस्तक देता हूँ कि कैसा व्यवहार करे एक विश्वासी जेल में। नहीं, उसने कहा यहाँ पास खड़े हो जाओ और देखो क्या घटित होता है, वापस जाकर यूहन्ना को बताओ कि क्या हुआ, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं और सुसमाचार कंगालों को सुनाया जाता है। ठीक वही जो नबी ने कहा घटित होगा, धन्य हो तुम जिन्होंने मुझसे ठोकर नहीं खाई। और उसके चेले पहाड़ पर से उस पार चल दिए। वो घूमा और बोला, तुम वहाँ क्या देखने गए थे जब तुम यहुन्ना को देखने गए? क्या तुम एक मनुष्य को देखने गए जो कोमल वस्त्र पहने हैं और आदि आदि और गोल कॉलर और ये सब आप जानते हैं? कहा, वे लोग राजभवनों में रहते हैं, बालकों को चूमते, मुर्दे गाड़ते, वो नहीं जानता कि दोधारी तलवार कैसे पकड़ी जाती है, समझे? कहा, तुम वहाँ क्या देखने गए थे? सरकंडे को जो हवा से हिलता है? यहुन्ना, यहाँ आओ, यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब मैं मेथोडिस्ट नहीं हूँ, मैं पेंटेकोस्टल हो जाऊंगा, मैं प्रेस्बिटेरियन हो जाऊंगा, मैं ये वो जो अधिक पैसे दे उसके साथ हो। तुमने हवा से हिलते हुए सरकंडे को नहीं देखा? तुम वहाँ क्या देखने गए थे? एक भविष्यद्वक्ता को? उसने कहा, हाँ, और एक भविष्यद्वक्ता से बड़े को। यूहन्ना ने यीशु को सबसे कम योगदान दिया, ये जानते हुए कि उसे इस प्रकार आना है। उसका परिचय कराने के पश्चात और उसके ऊपर चिन्ह देखने के पश्चात उसने कहा, ये मसीह है। तब फिर आकर पूछता है, क्या तू वही है या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? परंतु देखिए, यीशु ये जानते हुए वो मुड़ा और उसने उसके लिए योगदान किया। तुम क्या देखने गए थे? हवा से हिलते हुए सरकंडे को? कहा, स्त्री से जितने मनुष्य उत्पन्न हुए हैं उनमें से यूहन्ना से बढ़कर कोई नहीं। आज के दिन तक ये बात ठीक है, इस मनुष्य का क्या ही अभिनंदन किया। परंतु आप देखिए, ये था कि भविष्यवाणी ठीक उनके सामने पूरी हुई कि आगे आगे चलने वाले के साथ ठीक जो मलाकी ने कहा। अब ये मलाकी तीन है न कि चार। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मलाकी तीन है, यीशु ने ऐसा ही कहा। जब उन्होंने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं? कहा, वो तो आ चुका, जो उन्होंने कहा वही किया। परंतु स्मरण रहे, मलाकी चार के भविष्यद्वक्ता के तुरंत बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का चौथा आगमन यानी एलिया का, पांचवा आगमन प्रकाशित वाक्य दो गवाह, जब वो बचे हुए यहूदियों को लेने के लिए आता है। परंतु परमेश्वर ने इस आत्मा को पांच बार प्रयोग किया, अनुग्रह GESUS, हर समय ये यीशु जीसस था, FAITH GRACE और आदि आदि। आप समझे, पांच अनुग्रह का अंक है और उसने इसका प्रयोग किया। तीन में प्रयोग नहीं करेगा, दो में नहीं, तीन में, चार में नहीं करेगा, ये पांच बार उसका प्रयोग करता है। अब जरा जल्दी ध्यान दें, जैसा कि हम बंद करने जा रहे हैं, उसने कहा, ये वही है जिसके विषय में कहा गया है, मैं अपने दूत को अपने आगे आगे भेजता हूँ। परंतु मलाकी चार में उस नबी की भविष्यवाणी करने के तुरंत बाद सारी पृथ्वी का जलाया जाना है और धर्मी दुष्टों की राख पर चलेंगे। देखा, बिल्कुल ठीक। देखिए, ये मलाकी चार की भविष्यवाणी है। और ध्यान दें, लूका 17, जहाँ उसने कहा, अंत के दिनों में ये फिर से सदोम और अमोरा के समान आएंगे। क्या हमारे पास है? हमारे पास सदोम अमोरा फिर से हैं। समस्त राष्ट्र इसे देखिए, इसने अभी इंग्लैंड के लिए क्या कहा, सारी चीजें दूषित हो गई हैं, यहाँ तक कि भोजन दूषित हो गया। देखिए विज्ञान ने क्या कहा, रीडर डाइजेस्ट, देखिए, मेरा विश्वास है पिछले सप्ताह उन्होंने कहा 20 से 25 वर्ष की आयु में लड़के और लड़कियां अधेड़ आयु में से निकल रहे हैं। सभाओं में से उनसे मिले, छोटी लड़कियां रजनोवृत्ति में और 20-22 वर्ष की आयु में रजनोवृत्ति में। ये कहां ठहराया गया? दूषित, मिलावटी, यही जो भ्रष्ट हुआ, शरीर को पूरा दूषित कर दिया। हम कुछ नहीं, केवल एक मिलावटी पेड़ के समान घोटाला है। आप एक मिलावटी पौधा लेकर वहाँ रख दें, हर कीटाणु उसकी ओर दौड़ेगा, परंतु वास्तविक मूल पौधा कीटाणु इससे दूर भागेगा, वो इस पर नहीं टिक सकता। और यही मामला कलीसिया के साथ है, हमने इसे मिलावटी बना दिया। यही बात पेरिग्रीन के पुराने घोड़े के साथ है वहाँ पर, और उस दिन उसने उस लड़के को गिरा दिया। वो कुछ नहीं, केवल चौथाई घोड़ा है, समझे? केवल यही बात है, ये खच्चर के समान है। एक खच्चर नहीं जानता कि उसका पिता या माता कौन है, वो कुछ नहीं जानता। वो आधा खच्चर, आधा घोड़ा, आधा ये और गधा है। वो नहीं जानता कि वो क्या है। आप कभी नहीं सकेंगे। वो सारे जीवन प्रतीक्षा करेगा और आप पर लाज चलाएगा। ये ठीक बात है। आप उसे कह सकते हैं, कहते हैं, लड़के यहाँ आओ, यहाँ आओ लड़के, वो अपने कान सीधे खड़े करेगा और हों हों हों, समझे? जैसे उनमें से कुछ कह रहे हैं, आश्चर्यकर्मों के दिन बीत गए, हों हों हों। ये सारे आधे वंश, आदि कलीसिया के सदस्य और मसीह, मैं ये चुटकुले के लिए नहीं कह रहा हूँ, परंतु ये सत्य है। परंतु एक वास्तविक वंश का भाई, वो जानता है कि उसका पिता कौन है, उसकी माँ कौन थी, उसके दादा और दादी कौन थे। आप उसे कुछ सिखा सकते हैं, वो सज्जन है। और एक वास्तविक मसीह जो पवित्र आत्मा से जन्मा, परमेश्वर की सामर्थ और वचन से भरा हुआ है, वो जानता है उसका पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसका दादा और दादी कौन थे, वो इस सब के विषय में जानता है। आप उसे कुछ सिखा सकते हैं। परंतु एक आधे वंश का, यही जो कलीसियाओं में आते हैं, संसार और धर्म संस्था के बीच के मिलावटी, इसमें यहाँ थोड़ा वचन मिलाते हैं, थोड़ा वचन वहाँ, धोखा देने के लिए काफी है। ये ठीक बात है। जब आप परमेश्वर के मूल वचन को प्रकट होते हुए देखते हैं, जैसे कैफा और उन्होंने किया, वे इससे अलग हो गए और नहीं जानते, मिलावटी। अब हम इस संदेश में पाते हैं, यशायाह 40:3 भी यूहन्ना को प्रमाणित करता है। उसने कहा, एक शब्द एक भविष्यवक्ता जंगल में पुकार रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके मार्ग को सीधा करो। कलीसिया ने उसका विश्वास नहीं किया क्योंकि वो उनके झुंड का नहीं था। वो भविष्यवक्ता जंगल से उठा आया जो किसी को नहीं जानता था। उसके ऊपर वही आत्मा था जो एलिया पर था। वो जंगल का मनुष्य था, उसे आचरणहीन स्त्रियों से घृणा थी। स्मरण रखें, एलिया कैसे, किस कारण से उसका सिर काट लिया गया? इजाबेल थी, इजाबेल उसकी मृत्यु का कारण थी, उसने उसे जंगल में भगा दिया। यहूना बपतिस्मा देने वाला दूसरा जंगल प्रेमी, एक शिकारी, एक जंगल का मनुष्य, उस पर ध्यान दें। उसके पास कोई शिक्षा न थी, ध्यान दें, उसका विषय धर्म विज्ञानी के समान नहीं था। उसने कहा, ओ तुम करेत के वंश, सबसे बेकार चीज जो जंगल में आप पा सकते हैं, गुप्तपना, वो सांप। और उसने उन याजकों को कहा, तुम करेत के वंश, तुम्हें किसने चेताया कि आने वाले क्रोध से भागो? ये मत कहो कि हम इससे उससे, हमारे पास ये वो है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ परमेश्वर योग्य है कि इन पत्थरों से जंगल का ये भी कुल्हाड़ा जो उसने प्रयोग किया पेड़ की जड़ पर रखा है, हर पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में फेंका जाता है। आमीन। वो प्रकृति का प्रचारक था, परमेश्वर का एक महान पुरुष, थोड़े समय रहा परंतु निश्चय ही सारी पृथ्वी को धधका दिया। उसने अपनी 6 महीने की सेवकाई में उस पीढ़ी को हिला दिया। परमेश्वर ने उसकी 30 वर्ष पालन पोषण किया कि उसमें से 6 महीने ले, परंतु परमेश्वर अपनी ही विधि से करता है। वो जानता है उसका कटाई का समय क्या है। और हम ये पाते हैं कि बिल्कुल यही घटित हुआ। उन्होंने उसका विश्वास नहीं किया क्योंकि वो उनमें का नहीं था। उन्होंने नहीं किया जैसा था, उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने परमेश्वर के वचन मलाकी 3 का विश्वास नहीं किया था, तो फिर वे स्पष्ट देख लेते अक्षरों के द्वारा कि यही है वो जो आगे आगे चलने वाला था। उनके पास पिछले 400 वर्षों से कोई भविष्यवक्ता नहीं था और यहाँ अचानक से एक दृश्य में आ खड़ा हुआ, समझे? और लोग, विश्वासियों ने वही होने का विश्वास किया। उन्होंने इसका विश्वास नहीं किया, उन्होंने विश्वास नहीं किया क्योंकि जब उन्होंने देखा कि शब्द पूरी रीति से पुष्ट हो गया, जो उसने कहा वो वही करेगा और सारी बातें और स्पष्ट प्रमाणित होते हुए देखा, जब वचन सीधा जल में भविष्यवक्ता के पास आया, वहाँ वे खड़े थे। वहाँ उनमें वचन के लिए यूहन्ना के विषय में बहुत वाद विवाद थे। देखिए, यूहन्ना ने कहा, मुझे तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू क्यों मेरे पास आया है? यीशु ने कहा, अब ऐसा ही होने दे, क्योंकि इसी प्रकार, परंतु क्योंकि इसी प्रकार से हम लोगों में होना है, हमारे लिए उचित है, हो रहा है, ताकि हम ये सब पूरा करें। यूहन्ना, तू नबी होने के नाते तू जानता है बलिदान को धोया जाना अवश्य है इसके पहले कि उसे उपस्थित किया जाए, और मैं वो बलिदान हूँ और तू एक भविष्यवक्ता है और जानता है। तब उसने उसे बपतिस्मा दिया, समझे? और वो जान गया कि ये यही है। देखिए, वो उस पर हंसे, उसे जंगली चिल्लाने वाला अशिक्षित धर्मांध कहा, जैसा कि होता है। वो भविष्यवक्ता उस यीशु के पहले आगमन के आगे आगे चलने वाला था। मत कहिए कि वे क्या आज वही नकल नहीं है, आज उस असली की, वे कहते हैं, करते हैं, पूर्णता करते हैं, परंतु स्मरण रखें, जब आप नकली डॉलर देखते हैं तो कोई असली डॉलर होना चाहिए जिससे वो बना है। जब आप किसी को मसीह होने की नकल करते देखते हैं तो कहीं सच्चा मसीह ही है, क्योंकि यदि ना होता तो वो सच्चा होगा। आपको सच्चा लेना ही है, परंतु पहले वाले को परखें और देखें यदि वास्तविक ठीक उस प्रतिज्ञा के साथ है। यदि ये है तब इसका विश्वास करें, उस युग की प्रतिज्ञा का। तब यूहन्ना की भविष्यवाणी परमेश्वर के क्रम में प्रमाणित थी। वचन भविष्यवक्ता के पास आया और उसका एक सच्चे व्यक्ति के समान समर्थन किया गया। यीशु फिर से भीतर आया, उनकी उस भविष्यवाणी की समझ से अलग, वे उसे इस प्रकार नहीं समझ सके। अब हम अंत की ओर आ रहे हैं, परंतु भविष्यवक्ता के वचन के अनुसार ये अक्षर अक्षर पूरा हुआ। भविष्यवाणी पूरी हो गई, परंतु जिस प्रकार से उन्होंने सोचा कि ये होगा वो उस प्रकार से नहीं था। अब वे कैसे इसे समझ सकते थे और जान पाते कि क्या सही या क्या गलत है? ये देखते यदि ये परमेश्वर द्वारा प्रमाणित हुआ, यदि ये परमेश्वर था जो अनुवाद कर रहा था जो उसने कहा, वहाँ झूठे यीशु उठ खड़े हुए थे और लोगों के झुंड की अगुवाई करके ले गए 400 को जंगल में और आदि आदि, परंतु उसने स्वयं को कभी भी वचन से सिद्ध नहीं किया। आप देखिए जैसा उसने कहा, यीशु जब वो आया उसे भविष्यवक्ता होना था, ये ठीक बात है। और आज इसके पहले यीशु फिर आए, यीशु मसीह व्यक्ति का पूरा प्रकटीकरण शरीर में हुआ था। इस पर सोचिए, यीशु ने कहा, जैसा सादोम के दिनों में था ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा, जब मनुष्य का पुत्र प्रकट हो रहा होगा। प्रकट हुआ क्या है ये? खोलना, जान लेना, भेद को प्रकट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के दिनों में प्रकट होगा, संसार सादोम की दशा में होगा। हमें ये मिल गया, क्या हमें नहीं मिला? जी हाँ, कितने ये विश्वास करते हैं ये सादोम की दशा में है, ये बिल्कुल ठीक बात है। अब देखिए ये कहाँ पर बैठता है। स्मरण रखें, लोगों के इकट्ठे होने वाले झुंड में 3 प्रकार के लोग होते हैं, ये बनावटी विश्वासी अविश्वासी और विश्वास ये हमारे हर झुंड में होते हैं, उनमें ये सदा से रहे हैं। वहाँ सदोमी थे, वहाँ लूत वाले थे और वहाँ अब्राहम था। अब्राहम बुलाया हुआ झुंड था, वो आरंभ से ही सदोम में नहीं था। अब उनके संदेश वाहकों पर ध्यान दें, वे प्रतिज्ञा के पुत्र की राह देख रहे थे, वर्षों से राह देख रहे थे। परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत सारे चिन्ह और आश्चर्यकर्म दिखाए, परंतु यहाँ परमेश्वर स्वयं एक मनुष्य के समान नीचे उतर आया। आप कहते हैं वो एक दूत था। अब्राहम ने उसे प्रभु कहकर पुकारा, बड़ा अक्षर LORD। कोई भी बाइबल का पढ़ने वाला जानता है कि बड़े अक्षर का लॉर्ड एलोहिम है। आदि में परमेश्वर ने प्रभु परमेश्वर एलोहिम, वो सर्व सामर्थी अब्राहम ने उसे प्रभु परमेश्वर एलोहिम कह के पुकारा। अब ध्यान दें, वहाँ दो लोग नीचे सदोम में एक संदेश लेकर गए और उन्होंने सदोमियों को प्रचार किया। उन्होंने कुछ नहीं किया परंतु उन्हें अंधा कर दिया, जो कि सुसमाचार प्रचार करना अविश्वासी को अंधा कर देता है। परंतु ध्यान दें, अब्राहम के झुंड को किस प्रकार का चिन्ह मिला। अब हमें अब्राहम का राजसी वंश होना चाहिए। इसहाक शारीरिक वंश था, परंतु विश्वास का वंश, विश्वास प्रतिज्ञा का वचन, प्रतिज्ञा किया हुआ वचन ही राजसी वंश था। इसमें चूके नहीं, वही वंश था अब्राहम का विश्वास। हमारा मसीह में मरने से हम अब्राहम के वंश के हैं, प्रतिज्ञा के अनुसार उसी के संगी वारिस। ध्यान दें, जब ये सब घटित हो रहा था तो नीचे वहाँ सदोम में दो सेवक महान संदेश के द्वारा सेवकाई कर रहे थे। एक यहाँ अब्राहम के झुंड के संग बैठा था, वे वहाँ उस नीचे वाले झुंड के साथ मूर्ख नहीं बने। अब उस पर ध्यान दें जो अब्राहम के झुंड के साथ था, उसने उन्हें किस प्रकार का चिन्ह दिया। उसने कहा, अब स्मरण रखें, कुछ दिनों पहले उसका नाम अब्राम था और सारा ना के सारा राजकुमारी, और ये व्यक्ति जिसकी पीठ तंबू की ओर थी। तब की स्त्रियां अब से भिन्न प्रकार की थीं, ये जाती हैं और अपने पति के कार्य में होती हैं और बहुत कुछ आप जानते हैं, परंतु तब वे ये नहीं करती थीं, वे पीछे रहा करती थीं। इसलिए वे दूत वहाँ बैठे थे, संदेशवाहक, और उसने कहा, अब्राहम तेरी पत्नी SARAH सारा कहाँ है। वो ये कैसे जानता था, उसे कैसे मालूम हुआ। अब्राहम ने कहा, वो आपके पीछे तंबू में है। उसने कहा, मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार मैं तुझसे समय पर मिलने वाला हूँ, मैं तुझसे मिलने जा रहा हूँ। और सारा अपने में एक प्रकार से हंसी, उसकी पीठ तंबू की ओर थी, और उसने कहा ये कहते हुए, सारा क्यों हंसी कि ये बातें कैसे संभव हैं। यदि वो अब्राहम की पत्नी ना होती उस समय तो परमेश्वर ने उसे मार डाला होता। ऐसा ही हमारे साथ होता है, हमारे अविश्वास के साथ। यदि हम मसीह में ना होते तो ये हमें वहीं थाम लेता है। देखिए, वो हानि ना कर सका, अब्राहम को बिना चोट पहुंचाए सारा को नहीं ले सकता था, समझे। और इसलिए स्मरण रखें, यीशु ने कहा, जैसा कि ये सदोम के दिनों में था, ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। हम देखते हैं कि हर कोई सहमत है कि संसार सदोम की दशा में है। यहाँ अधिक समय नहीं हुआ, मैंने लॉस एंजलिस का अखबार उठाया और कहा, मैं सोचता हूँ कि ये समलैंगिक लॉस एंजलिस में 20 या 30% बढ़ गई है, हर वर्ष इतना बढ़ रहा है। ये भयानक है, हमारी सरकार और हर जगह हर चीज दूषित हो रही है। ये ठीक बात है, सब कुछ, सारा तंत्र, कलीसिया, हर चीज दूषित हो गई है। ये मिलावटी युग में है। और मैं आप धर्मी विज्ञानियों से कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, मैं आपके विरोध में नहीं बोल रहा हूँ। मेरे प्रिय भाइयों, मैं यहाँ आपकी सहायता के लिए हूँ। भाई, मैं यहाँ उस पक्ष पर खड़ा हूँ जो परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे कि मैं आपका हाथ पकड़कर और लोगों का कि इस भीड़ को इस मामले से बाहर लाता हूँ। ये ठीक बात है, परंतु यहाँ देखिए, इसके पहले हमारे पास कभी भी कोई संदेशवाहक अब तक सदोम में नहीं हुआ जिसका नाम हाम से समाप्त हो। हमारे पास स्पर्जन, एक वेस्ली, एक लूथर और सब कुछ थे, पर कभी भी अंतर्राष्ट्रीय संदेशवाहक जिसका नाम इसके पहले हाम से समाप्त हो कभी नहीं हुआ। ये ठीक बात है। देखिए, GRAHAM, 6 अक्षर, GRAHAM, बिली ग्राम, ये विशेष प्रचारक, परमेश्वर का महान कार्य, परमेश्वर की ओर से भेजा गया मनुष्य, उसका न्याय इतना अनुकूल है, वो इससे राष्ट्र को हिला देता है इस प्रकार से। वहाँ ऐसा नहीं है। और रॉबर्ट को देखिए, पेंटिकॉस्टल नामधारी, उसके समान कब कभी कौन हुआ। 6 अक्षर ना कि 7, अब्राहम में ABRAHAM, 7, बिली ग्राम GRAHAM, 6। अब संदेश वाहकों को देखिए, जिस समय में हम रह रहे हैं उसे देखिए, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। उन्हीं एक से चिन्हों को देखिए जिनकी प्रतिज्ञा दी गई थी, जो प्रत्येक झुंड को दिया जाएगा। देखिए वे कहाँ पर हैं। ठीक वैसे ही था, उसी स्थान पर, ठीक क्रम में, प्रकृति, संसार, हर चीज ठीक अपने समय पर तय है। अब इसमें चूके नहीं, जबकि हम बाकी इस पवित्र शास्त्र का खाका तैयार करते हैं। जल्दी से, क्योंकि मैं आपको बहुत देर से रोके हूँ, इधर देखिए, और भविष्यद्वक्ता के अनुसार वो ठीक वचन के अनुसार आया, बिल्कुल ठीक समय पर। अब इस युग को देखिए जिसमें हम रह रहे हैं, क्या हम ठीक साधुओं के समय में नहीं जी रहे हैं? अब्राहम के झुंड के संदेशवाहक पर ध्यान दें, नंबर पर ध्यान दें, अक्षरों पर, उसके नाम के अंकों पर। आप कहते हैं नाम में कुछ नहीं है, आपसे ये कोई ना कहे। उसने क्यों अब्राहम का नाम बदलकर अब्राहम किया, सारा से सारा किया? उसने क्यों शमान को पतरस में बदला और दूसरे सारे समझे? निश्चय ही बिल्कुल ठीक। यही कारण है मैं कहता हूँ कभी भी अपने बालकों को रिकी ना पुकारें, या एल्विस का अर्थ है बिल्ली, रिकी का अर्थ है चूहा। देखिए जब आप कहते हैं ये बिल्कुल ठीक है, जब तक कुछ ना हो अपने बालक को ये ना पुकारें, यदि हो तो जल्दी लोगो जल्दी से बदल दें। यदि आप मुझ पर परमेश्वर का दास होने का विश्वास करते हैं तो उस बेचारे बालक को ना दें, समझे? नहीं श्रीमान, इससे अलग कोई और नाम दे दें। ओ, मुझे इससे अलग हो जाना चाहिए क्योंकि मैं अपने विषय से अलग हूँ, परंतु मैंने ये कहा है और ये हो गया है। ऐसे ही आप ये करते हैं, जब आप ये कहते हैं तो आप नहीं जानते, समझे? उसे कहा बहारी, एक भविष्य बताने वाला, एक शैतान, एक बालजबू, और कहा वह स्वयं को परमेश्वर बनाता है। ओ, क्या यशाया भविष्यद्वक्ता ने नहीं कहा वो सामर्थी परमेश्वर कहलाएगा? यशाया 9:6, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कंधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला कहलाएगा, शांति का राजकुमार, और सामर्थी परमेश्वर, सदा काल का पिता। ये ठीक बात है। यूहन्ना 1:1 में भी आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ और हमारे मध्य में डेरा किया। आप ये विश्वास करते हैं? ऐसे ही नहीं था, वो एक भविष्यद्वक्ता था, परंतु वो एक भविष्यद्वक्ता से अधिक था, वो परमेश्वर भविष्यद्वक्ता था। उसे क्यों आना था, स्मरण रखें, वो 3 पुत्रों के नाम में आया। पहले वो मनुष्य के पुत्र के नाम में आया, उसने स्वयं को परमेश्वर का पुत्र कभी नहीं कहा, आप ये जानते हैं। देखिए, वो मनुष्य के पुत्र में आया, एक भविष्यद्वक्ता, स्वयं यहोवा पिता यिर्मयाह को मनुष्य का पुत्र कहा। भविष्यद्वक्ता मनुष्य का पुत्र होता है। वो आया, अब वो पेंतेकोस्त के दिन के बाद आया, वो पवित्र आत्मा के रूप में आया, अलौकिक आत्मा, अब वो परमेश्वर का पुत्र है। सहस्र शताब्दी में वो दाऊद का पुत्र होगा, दाऊद के सिंहासन पर बैठा हुआ है। देखिए, वो आया, वो परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, दाऊद का पुत्र। ओ, बाइबल इन सोने की डलियों से भरा हुआ है। हम इन सबको एक ही रात में नहीं पा सकते, परंतु इस समय के लिए उपयुक्त बैठता है। कल संभव है, कभी भोर ना हो, हम कल से पहले जा सकते हैं। मैं ऐसे व्यक्ति को प्रचार कर सकता हूँ जो सुबह से पहले मर जाए, मैं भोर होने से पहले जा सकता हूँ। भाई बहनों, ये कल्पना नहीं, ये वास्तविक सत्य है। हम नहीं जानते किस समय हम जा रहे हैं, और आपके पास इसके पहले आपकी सांस आपके शरीर को छोड़ दे अवसर ना हो, इसे अभी ठीक कर लें। सुबह की प्रतीक्षा ना करें, संभव है देर हो जाए। अब ध्यान दें, उन्होंने उसके साथ ठीक वही किया जो भविष्यद्वक्ता ने कहा कि वे करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे वे इस दिन लुदियकियन युग में कर रहे हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो प्रकाशित वाक्य 3 पढ़ें, अंधे, नंगे और ये नहीं जानते मसीह का इनकार। जब वो स्वयं को बीज के रूप में फिर से प्रकट करना आरंभ करेगा, वही जो भूमि में गया था वापस दुल्हन होने को आएगा। दुल्हन और दूल्हा, वही मांस और लहू, वही सेवकाई, वही बात, ठीक वही कर रहा है जो कर चुका वो आत्मा। और यहाँ वो नकल मार रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, और प्रत्येक के पास अपनी पुस्तक है, दौड़ रहा है, और ये ओ, अपनी ऐसी अनुभूति कभी नहीं सुनी होगी, और मुझे शैतान की गंध आती है, ये वो सब, बस जितना हो सकता है वचन से अलग। और वास्तविक चीज ठीक उनके सामने है, वे छोड़कर चले गए, वे मेरी संस्था से नहीं है। अरे ओ, जरा देखो, अंधा अंधे को मार्ग दिखा रहा है, क्या वे सब गड़े में नहीं गिरेंगे? मनुष्यों के नामधारी रीति रिवाजों से अंधे, जैसा परमेश्वर ने कहा, उसे अपनी कलीसिया से बाहर कर दिया, वे ये करेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 में जैसा होता है, जैसी भविष्यवाणी हुई। अब ध्यान दे कैसे यीशु ने स्वयं को चेलों पर प्रकट किया। अब और बंद करेंगे, ये 2 चेले कैफा, बल्कि क्लियोपास और उसका मित्र। अब हम पुनरुत्थान की प्रातः में हैं, पुनरुत्थान के पश्चात पहला पुनरुत्थान, क्या ही सुंदर सवेरा। यीशु मरुओं में से जी उठा और अपने लोगों के मध्य में है, क्या ही सुंदर विचार है। वो आज यहाँ वैसे ही है जैसे वो उस दिन था, क्योंकि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है, और स्वयं को आज अधिकाई से प्रकट कर रहा है बजाय किसी और युग के। उस दिन से, उस गेहूं और खुंदनी के छिलके से होते हुए आया, अब सब बीत गया, हम फिर से गेहूं में हैं। देखिए, हम वापस दाने में हैं, ऐसे जाना जाता है, जाना गया। ध्यान दें कैसे स्वयं को उन लोगों पर प्रकट किया। अब स्मरण रखें, उनके मसीहा के समान, बंद करने से पहले, जिस वचन की उस युग में प्रतिज्ञा हुई थी, ध्यान दें, वो प्रकट हुआ जैसे जैसे कि उसने कहा वो करेगा। भविष्यद्वक्ताओं पर ध्यान दें, निर्बुद्धियों और विश्वास करने में मंदमतियों की, सारे भविष्यद्वक्ताओं ने उसके विषय में लिखा है, वो पूरा होना ही था। उस पर ध्यान दें, वो वापस परमेश्वर के वचन का उल्लेख करता है, उसने कभी भी सीधे सीधे आकर उनसे ये नहीं कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते, मैं मसीह हूँ जो जी उठा है। उसने ऐसा कभी नहीं कहा। देखिए, उसने उन्हें केवल वचन दिया जैसे यहून्ना ने किया। बाकी उन्हें समझे, उन्हें ये स्वयं ही निकालना था, उन्हें स्वयं ही को जांचना था। अब सोने मत जाओ, स्वयं को जांचो। निर्बुद्धियों और विश्वास करने में मंदमतियों, भविष्यवक्ताओं ने जो कहा वो तो घटित होना ही था। उनके लिए क्या ही झिड़की है जो दावा करते हैं कि वे उसे जानते हैं। ध्यान दें कि वो विषय पर कैसे पहुंचा। जैसे मैंने कुछ मिनटों पहले कहा, उसने सीधा सीधा नहीं कहा और कहा, क्या तुम नहीं जानते इस युग में मैं तुम्हारा मसीहा हूँ, क्या तुम नहीं जानते कि मैं वही हूँ। परमेश्वर का सच्चा दास कभी भी स्वयं को इस प्रकार प्रमाणित नहीं करता। वचन प्रमाणित करता है कि वो कौन है, निश्चय ही वो करेगा। परंतु उनका ध्यान आकर्षित करता है कि भविष्यद्वक्ता ने मसीहा के युग के लिए क्या कहा है। इसे देखें, ठीक वापस जाएं, निर्बुद्धियों और समझने में मंदमतियों, भविष्यद्वक्ताओं का विश्वास न करने में जो उसने मसीह के विषय में कहा कि घटित होना चाहिए। वो जैसे यूहन्ना बाइबल का वचन उसे प्रमाणित करे, वो उनके लिए क्या है ये स्पष्ट होना चाहिए। यदि वचन ने उसे प्रमाणित कर दिया, वो स्पष्ट होना चाहिए किसकी प्रतिज्ञा की गई है कि वे उसे देखें। वे जान गए वो था, किसी को उस समय दृश्य पर आना चाहिए। क्यों उसने कहा, अब मैं आपको दिखाऊं कि वचन क्या कहता है कि आज के दिन में क्या घटित होना चाहिए। मैं नहीं, आज रात्रि मैं आपको वचन दर वचन करके बताने का यत्न कर रहा हूँ, यहाँ तक कि स्थिति, स्थान, नामों, अंकों, हर चीज और सारे चिन्ह और समय, हर चीज कि हम बिल्कुल ठीक अंत के समय में हैं। निश्चय ही आप देख सकते हैं कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। देखा, समझे, ये इतना स्पष्ट है और अधिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उसने कहा, जब वो यहाँ पृथ्वी पर था, पवित्र वचनों में ढूंढो, उसमें तुम समझते हो कि तुम्हें अनंत जीवन मिलता है। वे वो हैं जो मेरी गवाही देते हैं कि मैं क्या हूँ, देखिए मैं कौन हूँ। ध्यान दें, वो मूसा के साथ आरंभ करता है, भविष्यद्वक्ता, एक भविष्यद्वक्ता, व्यवस्था विवरण 18:15। मैं यहाँ वचनों को देख रहा हूँ, व्यवस्था विवरण 18:15। मूसा ने कहा, तुम्हारा प्रभु परमेश्वर, देखिए परमेश्वर उससे पर्वत की चोटी पर बोला और ओ प्रभु गर्जने। उन्होंने कहा, प्रभु करे, मूसा ही बोले न कि परमेश्वर, कहीं हम नाश ना हो जाएं। उसने कहा, उन्होंने ठीक ही कहा है, मैं करूंगा, अब मैं उनसे और बातें ना करूंगा इस प्रकार से, परंतु मैं उनके लिए एक भविष्यद्वक्ता उठा खड़ा करूंगा। और इस सारे दौर में यही उसका संदेश रहा, यही सारा मामला अंत में तय होना है। ये होना ही है क्योंकि प्रभु का वचन भविष्यद्वक्ता के ही पास आना है। केवल यही चीज है जो आ सकती है। यदि ये नहीं होता तो ये परमेश्वर के वचन को तोड़ता है और उसे ये बना देता है कि उसने कुछ गलत बताया। ये कभी भी धर्म विद्यालय को नहीं जाएगा, ये भविष्यद्वक्ता के पास आता है और भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के पास से अभिषेक होकर भेजा जाता है। और आप कैसे जान पाते हैं कि ये है और ना कि जो मनुष्य ने कहा। हमारे पास एलिया था और ओढ़ने और बहुत कुछ और वस्त्र, सब इस प्रकार के निर्थक बातें जो सब संस्थावाद में चली गईं, सारी चीजें एक साथ। परंतु यहाँ पृथ्वी पर आएगा परमेश्वर की प्रतिज्ञा के द्वारा परमेश्वर का एक वास्तविक दास, परमेश्वर के द्वारा प्रमाणित, उसके वचनों के द्वारा इस युग का उत्तर, जो दुल्हन को यथाक्रम में रखेगा, एक वास्तविक कलीसिया के अल्पसंख्यक, और इसे ऊपर ले जाएगा। ये ठीक बात है, वो परिचय कराएगा। देखो, एक जिसके विषय में मैंने बातें की, देखो वो आएगा और वो सब जो भविष्यद्वक्ताओं ने उसके विषय में कहा और इस युग के लिए, क्यों निश्चय ही वो इसको सुनने के लिए रुचिकर होगा। क्या आप उसको ये कहते हुए सुनना पसंद नहीं करेंगे, सारे भविष्यद्वक्ताओं ने इस विषय में कहा। इसमें उसने कहा, जो भी भविष्यद्वक्ता अपने विषय में कहेगा स्वयं अपना उल्लेख करे जो उसने कहा था और वचन था, भाव बताएं। अब हम वचनों को सुने जिनका उसने उद्धरण किया। क्या आप सुनना चाहेंगे कि उसने उनसे क्या कहा। हम उनकी बातचीत को जारी रखें इसके पहले कि हम रुकें। अब क्रूस चढ़ते समय जो घटित हुआ उसका सारांश दिया, उस कथा का, कब्र और कब्रगाह, और स्त्रियों ने उसे देखा और दूसरों ने कहा उन्होंने उसे देखा, और आदि आदि उसने कहा उन्होंने इसकी रूपरेखा दी। और इस विषय पर वो ठीक वचन पर आया, अपना उल्लेख वचन के द्वारा होते हुए दे रहा है। अब जकरिया 12 में देखें, उसे जकरिया 11:12 का उल्लेख करना चाहिए, क्योंकि वो चांदी के 30 सिक्कों में बेचा गया। क्या मसीह को चांदी के 30 सिक्कों में नहीं बेचा जाना था। वचन संहिता 41:9 में उसे उसके मित्र के द्वारा धोखा दिया गया। देखा, जकरिया 3:13-7 अपने शिष्यों द्वारा छोड़ दिया गया। वचन संहिता 35:11 में झूठे गवाहों के द्वारा दोषी ठहराया गया। यशाया 35:7 के द्वारा दोष लगाने वालों के सामने शांत रहा, कभी अपना मुंह नहीं खोला। ठीक है श्रीमान, यशाया 56 उसे कोड़े मारे गए। भजन संहिता 22:22 क्रूस पर चिल्लाया, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरी सारी हड्डियां वे मेरी ओर घूरते हैं, उन्होंने मेरे हाथ और पैर छेद दिए। भविष्यवाणी को देखिए जिसके विषय में वो बात कर सकता था। यशाया 9:6 हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, एक कुंवारी गर्भवती होगी आदि आदि। भजन संहिता 22:18 में भी उन्होंने उसके कपड़े आपस में बांट लिए। यशाया 7:14 में कुंवारी गर्भवती होगी। भजन संहिता 22:7-8 उसके शत्रुओं द्वारा उसका ठट्टा किया गया, जिन्हें मित्र होना चाहिए था उसके शत्रु कलीसिया। फिर से भजन संहिता 22 में उसकी कोई भी हड्डी तोड़ी ना गई थी, परंतु उन्होंने उसके हाथ और पांव छेद दिए। यशाया 53:12 अपराधियों के संग मारा गया। यशाया 53:9 कुचला गया और धनी भाई के संग गाड़ा गया। भजन संहिता 16:10 में वो मृतकों में से जी उठा। दाऊद ने ऐसा कहा, मैं अपने पवित्र जन को सड़ने ना दूंगा कि सड़ाहट को देखे, ना कि उसका प्राण अधोलोक में छोड़ूंगा। वो मृतकों में से जी उठा था। मलाकी 3 यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसका आगे मार्ग सुधारने वाला था, और वो सारे प्रतीकों में से होकर निकला, यहाँ तक कि इसहाक पहाड़ पर उसी का ही प्रतीक था, उस पहाड़ पर जहाँ उसका पिता अब्राहम उसे ले गया, उत्पत्ति 22 में। ये अब था वो देखने लगे इन वचनों को किसने पूरा किया जिनकी प्रतिज्ञा उन दिनों के लिए थी। ये तब था, इसके हो जाने के पश्चात वे इसे देखने लगे। ओ भाई जरा एक मिनट, आप जानते हैं क्या, तब वे जान पाए कि उनका क्रूस पर चढ़ा हुआ मित्र यीशु वो भविष्यवक्ता था जिसकी प्रतिज्ञा दी गई थी। वे जान गए, क्योंकि देखिए उन्हें पवित्र वचनों का सारांश नहीं दिया गया, परंतु यहाँ वे सारी बातें जो क्रूस पर घटित होनी थी, वे सारी बातें निर्बुद्धियों, समझने में मंदमतियों, जो भविष्यवक्ताओं ने कहा कि मसीह कैसे दुख उठाएगा और अपनी महिमा में प्रवेश करेगा और तीसरे दिन जी उठेगा, वे अभी नहीं। ओ हाँ, ये ठीक बात है, मैं देखता हूँ। वो क्या हमारे हृदय उत्तेजित नहीं हुए, उन्होंने कहा, कोई आश्चर्य नहीं, उनके हृदय उत्तेजित हुए, वे भविष्यवाणियाँ जो वो बता रहा था पूरी हुई थी। तब वे समझने लगे कि उनका वो मित्र, वो पुरुष जिसके साथ उन्होंने खाना खाया, बातें की, संग रहे, मछली पकड़ी, जंगल में सोए, उस वे सारे वचन उस घड़ी के पूरे हुए और वे वहाँ था। वे 6 मील चले, ये बहुत थोड़ा सा समय लगा, मैं समझता हूँ भविष्यवाणियों को प्रमाणित पर 6 घंटे का उपदेश चला, जो आज रात्रि हमारा है उससे थोड़ा अधिक। ये एक प्रकार से सांझ के समय देर हो रही है, सांझ का उजाला आ गया था। कलीसिया अब भी वैसे ही समय है, सांझ का उजाला आ गया है, इब्रानियों 13:8 वो कल आज और सर्वदा एक सा है। ओ घटनाएं भविष्यवाणी के द्वारा स्पष्ट हो रही हैं, वैसे ही आज है, सांझ के उजाले की प्रतिज्ञा परमेश्वर के भविष्यवक्ता के द्वारा दी गई। जकरिया 14:7 सच्चे विश्वासी की आंखें फिर से उन घटनाओं के लिए खोल सकता है जो आज हो रही है। ये भविष्यवाणी के द्वारा सिद्ध हो गया है कि हम अंत के समय में हैं, यीशु आ रहा है। ये है, उसने कहा एक ऐसा दिन होगा जो कि ना रात या दिन कहलाएगा, उसने कहा परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। भौगोलिक रूप में हम जानते हैं सूर्य पूर्व में उदित होता है और पश्चिम में अस्त होता है। अब भविष्यवक्ता ने कहा एक लंबा समय होगा, निराशाजनक होगा एक प्रकार से, जो कि ना रात या दिन कहलाएगा, ये एक प्रकार का अंधियारा या धुंध वाला दिन होगा। अब पुत्र कहाँ से उठा, क्या वो पुत्र था जिसके विषय में अब हम बातें कर रहे हैं, वो स्वाभाविक SON पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, बल्कि वही परमेश्वर। और परमेश्वर का पुत्र पहले पूर्व में उठा पूर्वी लोगों के लिए, और अब उसके चले जाने के पश्चात उन्होंने क्या किया, 300 वर्षों के पश्चात उन्होंने अपनी पहली संस्था आरम्भ की, रोमन कैथोलिक कलीसिया। वे अंधकार के युग में से निकले और वे बाहर आए, वे क्या करेंगे, वही बात, ये एक दिन था, ये ना तो दिन या रात कहलाया जा रहा था। उनके पास पर्याप्त व्यवस्था थी और उन्होंने इसका विश्वास किया, वो परमेश्वर का पुत्र था, और वे उस उजियाले में चले जो उनके पास था। उन्होंने अपनी कलीसिया बनाई, उन्होंने अस्पताल बनाए, विद्यालय और आदि आदि, और धर्म विद्यालय, अपने बालकों को विद्यालय भेजा। परंतु भविष्यवक्ता ने कहा ये लगभग सांझ के समय फिर उजियाला होगा, पुत्र फिर से दिखेगा, ये उजियाला होगा। क्या वही पुत्र SON सन जो प्रातः देह में प्रकट हुआ था फिर सांझ के समय में प्रकट होगा? अब लूका 17:30 की तुलना करें और उस दिन में जैसा सदोम के दिनों में था, संसार की व्यवस्था थी, उस समय में मनुष्य का पुत्र प्रकट हो रहा होगा। सांझ के समय उजियाला होगा, निश्चय ही तुम महिमा का मार्ग पाओगे। ओ मेरे लोगों, हम लोग कहाँ पर हैं? राष्ट्र टूट रहे हैं, इज़राइल जाग रहा है, वे चिन्ह जो भविष्यद्वक्ता ने पहले से बताए, अन्य जाति के दिन गिनती के हैं, उस हींगे के साथ भारग्रस्त उसका समुद्र में जाना ध्यान रखें। ओ पिछड़े हुए वापस लौट आओ अपनों में, कार्य का दिन समीप है, मनुष्य के हृदय भय से रुक रहे हैं, आत्मा से भर जाओ, अपने चिरागों को छांट लो और साफ करो, ऊपर देखो, तुम्हारा छुटकारा समीप है। अच्छा है कि तुम भाई बहनों, ये डरावना समय है, जिन बातों की भविष्यवाणी हुई उस पर ध्यान दें, घटित होने वाली बातों पर ध्यान दें, सारी भविष्यवाणी को देखें जो पूरी हो रही है, तब हम देखते हैं ये सब किस विषय में है। ये झुंड नहीं है धर्मांधता का दौर, ये तो परमेश्वर अपने वचन की ठीक पुष्टि कर रहा है, बिल्कुल ठीक। मित्रों, चट्टान पर प्रहार हुआ है, जितनी जल्दी हो सकता है उसकी ओर दौड़ो। भविष्यवाणी आज के दिन को प्रमाणित कर रही है जिसमें हम जी रहे हैं। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। प्रिय परमेश्वर, मित्रों, क्या आप अनुभव करते हैं कि वो दिन जिसमें हम जीवित हैं, क्या आप परमेश्वर से विवाद की हिम्मत करते हैं? क्या आप ये कहेंगे कि वो ठीक नहीं है जबकि उसने इसे सिद्ध कर दिया है, वह स्वयं अपना अनुवाद करता है? क्या आप उसकी सेवा करना चाहते हैं? अब अपने झुके हुए सिरों के साथ और अपने झुके हुए हृदयों के साथ, भाई बहनों, संभव है हमारी अंतिम सभा का समय हो सकता है, हो सकता है हम कभी नहीं। यदि मैं आज से एक वर्ष आगे जाऊंगा, यदि मैं जीता हूं, बहुत से जो आज यहां पर हैं तब ना होंगे, और मुझे आपसे न्याय के सिंहासन पर मिलना होगा और हर बात के लिए उत्तर देना होगा जो मैंने आज रात्रि कहा है। इसके पहले कि परमेश्वर, जबकि आप अपनी सही मनोस्थिति में हैं, क्या आप परमेश्वर के लिए इतना करेंगे? यदि आप जानते हैं कि आप बस परमेश्वर के दर्पण में स्वयं को देखें, बाइबल में, कोई मतलब नहीं कि आप कौन हैं, और कहते हैं मैं जानती हूं कि परमेश्वर की पुत्री होने के लिए मुझमें कमी है, उसी मार्ग से देखें जो मैं करता हूं। परमेश्वर का पुत्र होने में मुझमें घटी है, उसी मार्ग से देखें जो मैं करता हूं। परंतु परमेश्वर, मैं यहां नहीं होना चाहता, उस स्थान के लिए मैं संघर्ष करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपना हाथ परमेश्वर की ओर उठाएं। आप चाहें जो भी हों इस भवन में, मैं आप जहां कहीं भी हों, जी हाँ, मैं परमेश्वर का पुत्र होना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर की पुत्री होना चाहती हूँ। जो भी मेरे प्रभु की आज्ञा है मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। अब आप परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं समझता हूँ भक्त मंडली के 90%। अब मेरे मित्रों इधर देखिए, क्या होता यदि आप यूहन्ना के प्रचार के दिनों में रह रहे होते, क्या होता यदि आप यीशु यहाँ था तब रह रहे होते, आप किसकी किसकी ओर पक्ष में खड़े होते? यदि आप यीशु के में होते, स्मरण रखें, यदि आप पीछे के दिनों में होते तो ये अब के ही समान होता। वही यीशु स्वयं को अपने वचन के द्वारा जाना गया, देखिए, और ये बहुत ही अप्रिय रहा है। परंतु मैं आपको बता दूं, मैं लोगों को ये बताने का यत्न नहीं कर रहा हूं कि कलीसिया छोड़ दें या ओ, मैं चाहता हूं कि आप कलीसिया में जाएं, आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ें। परंतु मैं जो बताने का यत्न कर रहा हूं कि आप करें, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का यत्न करें। इन बातों को लें, संसार, कलीसिया, पेंटेकोस्टल, आप लोग बहुत संसारिक हो गए हैं, आप बहुत संसार के पीछे हैं। ये सरल है कि टेलीविजन और सारी चीजें देखें और जिस प्रकार वे कर रहे हैं और ये सारा। और पहली बात आप जानते हैं, धर्म विद्यालय और विद्यालयों ने अब इधर उधर समझौता करना आरम्भ कर दिया है और ये वो और बहुत कुछ। इसे इसी प्रकार से ही आना है। पेंटेकोस्टल कलीसिया मेरे बड़े समर्थन में रही है, मैं उनके विरोध में कुछ नहीं कह सकता। परंतु मैं जो चिल्लाता हूँ, मेरे भाइयों बाहर आ जाओ, पुकार, आपकी सभाएं वैसी नहीं जैसी हुआ करती थी, लोग वैसे नहीं जैसे हुआ करते थे, परंतु यीशु मसीह वैसा ही है। आइए उसमें चलें। अब आप जिनके हाथ ऊपर उठे हुए हैं, जंगल में मारी हुई एक चट्टान थी और वो सोता आज रात्रि भी बहता है, उनकी चट्टान मारी गई थी, मसीह, वो मारी हुई चट्टान है। और आज रात्रि जहाँ तक मैं जानता हूँ संभव है कलीसिया की बुलाहट का समय पहले ही बीत गया। मैं नहीं जानता, मैं ये नहीं कह सकता। स्मरण रखें, लोग यीशु के क्रूस पर चढ़ जाने के बाद भी वैसी ही सभाएं करते रहे और सारे लोग वे आएंगे, ध्यान दें, वे प्रचार करते रहेंगे और ये कहते हुए वे बच रहे हैं और आदि आदि, जैसे कि यदि संसार चलता रहता है जैसे चल रहा था, वे कहते हैं, परंतु अब तब बहुत देर हो गई होगी। मेरे भाई, जबकि आपके पास अवसर है मेरी बहन, परमेश्वर के राज्य में आ जाएं। आपको किसी और चीज की अधीनता में आने की आवश्यकता नहीं, केवल साधारण सा भरोसा उसके वचन पर विश्वास करना कि वो वचन है। प्रभु यीशु, मैं जानता हूँ कि मैं स्वयं अपनी ओर परमेश्वर के वचन के दर्पण में देख रहा हूँ, ओ मैं कितना छोटा हूँ। परंतु प्रिय परमेश्वर, यहाँ आज रात्रि, इस सोमवार की रात्रि, यहाँ सैन बर्निडो कैलिफोर्निया में, यहाँ इस सभागार में, प्रभु, मेरे पास यही सब कुछ है, परंतु मैं आपको दे दूंगा। प्रभु, क्या मैं जैसा हूँ आप मुझे वैसा ही ले लेंगे? क्या मुझे आप जल्दी ही अपने क्रूस के समीप आने देंगे? मैं संदेश वाहकों को देखता हूँ, मैं समय देखता हूँ, मैं सादोन से बाहर आने की बुलाहट देखता हूँ, मैं चिन्हों को देखता हूँ, मैं अब्राहम के झुंड को ज्योति पाते हुए देखता हूँ, मैं प्रकट होते हुए देखता हूँ कि यीशु फिर से हमारे मध्य में प्रकट हो रहा है जैसा वो था, मैं उन सारी बातों को देखता हूँ जिनकी प्रतिज्ञा आपने की है, मैं नकल करने वालों को देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि आपने कहा जैसा कि ये मूसा के दिनों में था कि कैसे जैन और यम्ब्रेस नकल करने के लिए आएंगे और फिर भी उसी ढेर में पड़े रहेंगे जिसमें वे थे। देखिए, वे उस वचन के द्वारा मूसा का अनुकरण नहीं करेंगे और उन बालकों को जंगल में नहीं ले जा सके क्योंकि वे मिस्र से जुड़े थे, वे ये नहीं कर सके। यद्यपि उन्होंने वही कार्य किए जो उसने किए, परंतु उनकी मूर्खता प्रकट हो गई और बाइबल कहती है ये यहोवा यूं कहता है ये अंत के दिनों में फिर से होगा। और आप इसे अपनी आँखों से देखते हैं, यदि आप आत्मिक हैं, मैं हूँ, मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता, मेरे लिए आवश्यक नहीं कि मैं इसकी व्याख्या करूँ, मेरी भीड़ मेरा शब्द सुनती है। आइए अब उसके पास चलें, जबकि हमारे पास अवसर है। क्या आप चलेंगे? यदि आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की आवश्यकता है, यदि आपको पुनः समर्पित होने की आवश्यकता है, एक नया जीवन, आपका पास्टर आपको तुच्छ नहीं जानेगा, वो इसके लिए आपसे प्रेम करेगा। आज रात्रि पूरी तरीके से स्वयं को परमेश्वर को दे दें जबकि हम यहाँ पर हैं। जी हाँ, मैं जानता हूँ कि ये कठिन रहा है, छंटाई अनोखा, मैं ये छोटा दिखाने के लिए नहीं करता, मैं ये ईमानदारी से करता हूँ, मैं ये इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और ये आपकी सहायता के लिए यत्न करता हूँ। और सच में मित्र, मैं विश्वास करता हूँ और अपने सारे हृदय के साथ, अपने सारे विश्वास के साथ, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा संदेश परमेश्वर से आता है, ये वर्षों से आप लोगों पर सिद्ध हो रहा है। अब सुनिए, आज रात्रि जो भी आपके पास है, हर चीज जो है उसे समर्पित कर दें, हर चीज जिसकी आपको आवश्यकता है, मैं सच समर्पित हृदय के साथ विश्वास करता हूँ। यदि बस आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं और कहें, प्रिय परमेश्वर, मैं यहाँ पर हूँ, प्रभु मुझे ले ले। अब मैं अपना मस्तिष्क प्रयोग करने का यत्न नहीं करूंगा और अपना अनुवाद आपका वचन कहता है मुझे पवित्र होना चाहिए, मुझे फिर नया जन्म लेना चाहिए, मुझे आत्मा से भर जाना चाहिए और फिर आत्मा मुझे सारे सत्य में मेरी अगुवाई करेगा। प्रिय परमेश्वर मैं यहाँ पर हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। क्या आप इतना करेंगे? यदि आप इतना करते हैं तो अपना हाथ उठाएं, कहें मैं ये करना चाहता हूँ, मैं इच्छा कर रहा हूँ। तो फिर आइए हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। अब अपना सारा कार्य ले लें, हर चीज, अपनी थकन, हर चीज। क्या हो यदि आप मर रहे थे? क्या इस पद पर आप अपना हाथ ऊंचा उठाएंगे? अब जब कि ऑर्गन बजाने वाला निरंतर बजा रहा है, आइए हम में से प्रत्येक युवा युवा आयु के, क्या आप चाहेंगे कि आप सड़क पर इस प्रकार से बाहर निकल जाएं कि ये गुंडों का झुंड? बहन, क्या आप अपने बाल छोटे रखना चाहेंगी? जबकि लंबे बाल रखना ये परमेश्वर के प्रति आप नजरीन हैं, उसके लिए बाल कटाना लज्जा की बात है। क्या आप ये छोटे पुराने स्कर्ट पहनेंगी और वे चीजें जो वे आज पहनते हैं, ये अश्लील पहनावा, इसमें से होकर आपका शरीर दिखता है वहाँ सड़क पर? क्या आप जानती हैं हर व्यक्ति जो आपको देखता है आपके साथ अपने हृदय में व्यभिचार करता है और आप स्वयं को इस प्रकार से प्रस्तुत करती हैं? स्त्रियों, क्या आप जानती हैं आप जो श्रृंगार करती हैं, बाइबल में केवल एक ही स्त्री है जिसने श्रृंगार किया और परमेश्वर ने उसे कुत्तों को खिलवा दिया, जिजाबेल। उसी के दिनों से घृणित नाम है उसके व्यवहार के कारण से। आप जानते हैं ये एलिया भविष्यद्वक्ता था जिसने उसे श्रापित किया और उसको इस नाम से इस प्रकार पुकारा। क्या आप जानते हैं ये हिरोदियास थी जिसके पीछे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पड़ा? क्या आप संसार की वो हॉलीवुड चीज नहीं होना चाहते हैं? यदि आप संसार और उसकी वस्तुओं से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर का प्रेम आप में नहीं है। भाई, सेवक, मित्रों, कुछ नहीं, कृपया मुझे समझिए, मैं आपका भाई हूँ। क्या आप अपना संबंध रखना चाहते हैं और आप किसी कलीसिया के सदस्य, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट या आप जो भी हैं, क्या आप अपने नामधारी को पकड़े रहना चाहते हैं जिसे आपकी माँ और आपकी दादी पकड़े रही? वो कहीं से निकलकर किसी चीज में आई, वो उस दिन की ज्योति थी, नूह के दिनों के समान। ये दूसरा दिन है। आप कहते हैं मेरे पास ये है, ये पेंतिकौसल का दिन नहीं है। पेंतिकौसल का युग बीत गया, पेंतिकौसल चला गया, ये कटाई का समय है, समझे? और कटाई का समय, दाना पानी दिया जा चुका है और दाना पक रहा है। दाने में आ जाए मेरे प्रिय भाई, मेरी सुनिए, मेरा विश्वास करें। यदि आप मेरा विश्वास, परमेश्वर का दास होने का विश्वास करते हैं, प्रत्येक अपने ही तरीके से अपना सर नम्रता में झुकाए और प्रार्थना करें। जैसा हम जानते हैं हमें अपनी प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर मैं जैसा भी हूँ मुझे ले ले। और भाई बहनों, मैं भी स्वयं को आज रात्रि वेदी पर रखता हूँ। परमेश्वर मुझे ढाले और मुझे भिन्न बना दे, परमेश्वर कुछ करे, मुझे अपने अनुसार बना ले। आप सोचते हैं कि ये सरल है कि यहाँ खड़े होकर लोगों को इस प्रकार टुकड़े टुकड़े करें, ये करना कठिन है, परंतु हाय मुझ पर यदि मैं ये ना करूं। प्रिय परमेश्वर, जैसे कि ये भक्त मंडली अपने सिरों और हृदयों को इस श्रद्धा के शरणों में यहाँ इस बाइबल के उपदेश की समाप्ति पर झुकाए हुए हैं, जब हम पवित्र आत्मा के प्रमाण को देखते हैं, जिसने इस राष्ट्र को हिला कर रख दिया, महान बेदारियां और संकेत ये जानते हुए कि अब इसके बाद कुछ होना है, और फिर उन सात स्वर्गदूतों को वहाँ एरिजोना में पहाड़ की चोटी पर आते हैं, जबकि राष्ट्र की समस्त पत्रिकाओं ने इसे छापा है, स्वयं यीशु को वहाँ आकाश में देखते हैं, नीचे देख रहा है और ये कह रहा है प्रकाशित वाक्य 10:7, सातवें स्वर्गदूत के संदेश में ये मोहरे खुल जाएंगी, परमेश्वर के भेद प्रकट हो जाएंगे, सुधारक इसे लाने के लिए अधिक नहीं जिए। और यहाँ ये सात मोहरें जो बंद हैं, सारी बातें इस दिन में खुल गईं। ये सारे महान चिन्ह और आश्चर्य कर्म जो किए गए, प्रमाणित हुए, होने के पहले बताए गए, आपने हमें एक बार कभी भी असफल नहीं किया, परंतु जैसा कहा गया वैसे ही घटित हुआ। प्रिय परमेश्वर, हम अनुभव करते हैं कि यीशु मसीह हमारे मध्य में है। हम जानते हैं कि वो यहाँ पर है, आज रात्रि वो यहाँ है, अदृश्य परमेश्वर यहाँ हमारे साथ है, और हर प्रतिज्ञा जो उसने अपने वचन में की उसकी पुष्टि कर सकता है। कैसे आप यहाँ खड़े हुए और उन पर पीठ घुमाकर सिद्ध किया, उस मूल के आरंभ में, इसके पहले की नकल करने वाले मैदान में आए प्रभु, या इस दौड़ में प्रवेश करें जैसा कि ये था। आपने दर्शाया और सिद्ध किया, भविष्यवाणी की और ठीक उसी प्रकार बताया जैसे कि ये होगा, और हम देखते हैं कि ये उसी प्रकार घटित हुआ। और परमेश्वर पिता, हम जानते हैं ये मनुष्य नहीं हो सकता, इसलिए हम ये जानते हैं कि आज रात्रि आप यहाँ पर हैं, हमारे पाप हमें क्षमा करें। प्रिय परमेश्वर, आपने हमारे रोगियों को चंगा किया है, अब प्रभु हमारे पाप क्षमा कर दें, क्योंकि हम उस प्रकार के मसीही नहीं हैं जो हमें होना चाहिए, ना ही कहलाने वाले पूर्ण सुसमाचार के पुरुष या स्त्री बने, और यहाँ हम स्वयं को नामधारी नीचे जाने वाले चूजे हों। प्रिय परमेश्वर, हमारी सहायता करें, हमें लें और अपने पवित्र आत्मा से झकझोरें, और यदि हमने कुछ ऐसा हो जो आपके समान ना हो, प्रभु उसे हम में से निकाल दें, और हमारे कदमों को परमेश्वर के पवित्र वचन पर जड़ दें, और पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में प्रज्वलित हो, और सारे अविश्वास के कूड़े को निकाल दें, और इस दिन के ऊन को ओ उठें और स्वयं को झकझोरें, परमेश्वर इसे प्रदान करें, हमें शुद्ध करें, हमें ढालें, हमें बनाएं, परमेश्वर इसे स्वीकार करें। प्रभु, यदि आज रात्रि कोई यहाँ पर हो जो अपने हृदय में बीज को पकड़े हो, परमेश्वर के जीन को जो कि पृथ्वी के रचने से पहले ठहराया गया हो, प्रभु मैं जानता हूँ कि वे इस घड़ी को सुनने के लिए बाध्य हैं, इसलिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके प्राण को तृप्त और ज्वलित कर देंगे पवित्र आत्मा के नए ताजगी के बपतिस्मे से, और उन्हें उनके मार्ग पर आनंदित और प्रसन्नचित होकर भेज देंगे। प्रभु परमेश्वर, वे मैं इन्हें आपको देता हूँ, मैं नहीं जानता ये कौन है, आप जानते हैं। प्रभु, मैं तो आपके वचन को प्रचार करने का उत्तरदायी हूँ, जैसे आप इसे प्रकट करते हैं, बाकी सबका जिम्मा आपका है कि बीज कहाँ गिरता है, मैं तो बस इसे फेंकता हूँ। प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये अच्छी उपजाऊ भूमि में आज रात्रि गिरे, ताकि बहुत से इसे देखेंगे प्रभु, और चमकने वाले मसीही इस अंत के दिनों में उठें, जो कि महान बात है, जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जल्द ही आएगा। प्रभु इसे प्रदान करें, और आप अपनी कलीसिया को ले लेंगे, अपनी दुल्हन को, और उसे घर ले जाएंगे। हम इसे क्रम में होते हुए देखते हैं। प्रभु यीशु, हम सब अपने आप को समर्पित करते हैं इसके परिणाम के लिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? तो फिर आपको एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे से हाथ मिलाएं। जब आप इसे फिर से गाते हैं, अब आइए उसकी महिमा करें। कितने इस गाने को जानते हैं? मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा। पापियों के लिए मरने के लिए मेमने की महिमा हो। सारे लोगों उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके लहू ने हर दाग को धो दिया। आइए अब हम इसे गाएं। क्या आप अनुभव नहीं करते कि सब कुछ धुल गया? अपने हाथ उठाएं। ओ, आप कहते हैं इससे मुझे अच्छा अनुभव होता है। भाई, मैं पुराने समय के गानों को पसंद करता हूँ। क्या आप भी? वे हृदय में उतर जाते हैं। अब आइए हम अपने हाथ उठाएं और परमेश्वर की स्तुति करें, हम में से प्रत्येक अपनी रीति से। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी हम स्तुति करते। प्रभु, बाबुल में से लोगों को बाहर बुलाने के लिए आपकी महिमा करते, आपके पुत्र के लहू के लिए हम आपका धन्यवाद करते। यीशु मसीह का हम आपको धन्यवाद देते, क्योंकि उसने हमें इस घड़ी में शुद्ध किया। अपनी गलतियों के लिए हम क्षमा मांगते, अपनी मूर्खताओं के लिए प्रभु, अंधकार में ठोकर खाने के लिए। ओ परमेश्वर, होने पाए हम उठें और चमकें और सांझ के उजियाले में चलें और सांझ के उजियाले में पेड़ पर आने वाले फल बने। प्रिय परमेश्वर, इसे प्रदान करें। हम स्वयं को आपको समर्पित करते हैं यीशु मसीह के नाम में। अब अपने झुके हुए सिरों के साथ मैं आप सेवक गणों को सेवा वापस देता हूँ।